बहुत सारे बीमार लोग हैं, मैं उन सभी को एक साथ नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सुनना, मैं निश्चित रूप से आज रात यहाँ फिर से होने के लिए खुश हूँ, इस सुंदर सभागार में, लोगों के इस अद्भुत झुंड के बीच में। और हम अंदर आ रहे थे, वहाँ बाहर कुछ समय पहले बाहर सड़क पर खड़े लोगों ने कहा कि वे अंदर नहीं जा सके, और मैंने कहा तो ठीक है, हो सकता है मैं आपके लिए कुछ स्थान बना सकूं, और उन्होंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इसलिए मुझे खेद है कि हमारे पास उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। उन्होंने बताया कि तलघर भी भरा हुआ है और इसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम यहाँ आकर खुश हैं और सेवकों के इस अच्छे झुंड को देखकर हम खुश हैं। यहाँ के व्यापारी लोग और आप सभी प्रतिनिधि मंडल को देखकर जो देश के विभिन्न भागों से हैं, मुझे आज सुबह के नाश्ते पर बोलने का बड़ा सौभाग्य मिला था। इतने अच्छे लोगों के सामने बोलना, मैं निश्चय ही मानता हूँ कि सम्मान की बात है। और मैं इस विषय पर बोल रहा था कि भूसी गेहूं के संग वारिस नहीं होगी। मैं इसे समाप्त नहीं कर सका और यह उस भाई की गलती नहीं थी। उसने प्रबंधकों के साथ कोशिश की कि हमें थोड़ी देर तक और बने रहने दें, लेकिन वह बस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। और भाई जेमास, मैं निश्चय ही इसकी सराहना करता हूँ, यह बहुत ही अच्छा था। मैं आप सभी में से प्रत्येक की कृपा और भलाई के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन उन्होंने हमें इसे पूरा नहीं करने दिया, इसलिए हमें बस बंद करना पड़ा था। मैं इसे किसी और समय में लेकर पूरा करूंगा। भूसी गेहूं के संग वारिस नहीं होगी, क्या आप इसे समझ गए? आप जो यहाँ पर थे, मैं आशा करता हूँ कि समझने के लिए ये काफी था। अब आज रात मैं जानता हूँ वहाँ एक समिति की चर्चा भी है, इसलिए मैं आपको अधिक समय तक रोक कर नहीं रखना चाहता कि आप इससे चूक जाएं, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह निश्चित रूप से पेंटिकॉस्टल विश्वासी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद था। उस समिति की चर्चा को उस रात हमने देखा था, यह बहुत ही अच्छे लोगों का झुंड है और क्या ही अद्भुत और साफ साफ उत्तर। इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज रात भी इसे आशीषित करेगा, और जो कोई भी उसे देखे होने पाए वे विश्वास करें, यही मेरी सच्ची प्रार्थना होगी। और बहुत सारी रिपोर्ट पत्रों के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा आ रही है कि बहुत से लोग इस सभा में चंगे हुए हैं। मैं इस बात से बहुत ही खुश था। मेरी सेवकाई कुछ इस प्रकार की है कि मैं बहुत से बीमारों से मिलूं। मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ। मैं, आप जानते हैं कि मैं प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी इस केंटकी व्याकरण के साथ बोलता हूँ, उसका ना ही है, और ऐसे ही और भी शब्द हैं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता जिसे हम आज के आधुनिक प्रचारक कहते हैं। मैं उस स्थान को नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों को इसके विषय में व्यक्त करूं जो मैं जानता हूं या जो मैं महसूस करता हूं, जो मैं इस विषय में जानता हूं दूसरे भी जाने। मैंने किस प्रकार इसे सीखा है वह मेरे लिए कैसा है, वही मेरा सारा जीवन है, वह सब जो मैं हमेशा ही होने की आशा कर सकता हूँ, और जो मैं सोच सकता हूँ मेरे लिए वो उससे अधिक है। जब मैं एक छोटा लड़का था तो शायद ही इस संसार में मेरा कोई मित्र रहा है, लेकिन निश्चय ही आज मैं बहुत सारे मित्रों के लिए धन्यवादित हूँ। मैं, ओह मुझे क्षमा करें, मेरा कहीं तो एक प्रकार से थोड़ा ध्यान हट गया था, उसने कहा। अब सीधे सभा को आरंभ करने के लिए आइए हम पढ़ने के लिए कुछ वचन को निकालें। मैं हमेशा ही बाइबल पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। मैं यह विश्वास करता हूँ और मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह परमेश्वर का अचूक वचन है। और अब मैंने यहाँ पर कुछ वचन लिखे हुए हैं और कुछ टिप्पणियाँ लिखी हैं, जिनको कि मैं अगले कुछ क्षणों में लेना चाहूँगा, हो सकता है 45 मिनटों के लिए, और तब समय में समाप्त करके हम इस अद्भुत समिति की चर्चा को आज रात फिर से देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आगे भी निरंतर आशीष देता रहेगा, और मैं जानता हूँ कि आपको क्या करना है, और मुझे भी गाड़ी चलाकर टूसान पहुँचना है। फिर भी आज रात देखो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह 10 घंटे की यात्रा है, और मुझे विदेश के लिए निकलना है, और मुझे सुबह सरकारी नियम में पीले बुखार का टीका लगवाना है जिससे कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। मैंने इसे उस दिन आगे के लिए टाल दिया था, और वे अब फिर से ना को जवाब के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, और मुझे टिटनेस और टाइफाइड के लिए एक और टीका लगाना है, और मेरे अतिरिक्त टीके की खुराक को लगाना है। इसलिए मैं इस अवसर के लिए धन्यवादित हूँ, और यह अच्छी सभा जो हमारे पास कन्वेंशन से पहले हुई थी, निश्चय ही मेरा हृदय इससे रोमांचित हुआ है। आप बहुत अच्छे लोगों का झुंड हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, और जब वो बड़ा समय जब कभी वो बड़ा दानव जो वहाँ ऊपर पड़ा हुआ था, जिसने कुछ दिन पहले अलास्का में करवट को बदला, इसने आज सुबह फिर से अपनी पूंछ को हिलाया वहाँ लगभग नीचे वॉशिंगटन के क्षेत्र में। वह इस ओर भी आसानी से बढ़ सकता है और यदि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तो निश्चय ही। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ब्रैनम क्या यह यहाँ भी हो सकता है? नहीं, मैं यह नहीं जानता, मैं बस नहीं जानता। जब तक मैं नहीं जान जाता, यही सच्चाई है। मैं हमेशा ही आपके साथ ईमानदार बने रहना चाहता हूँ। मैं बस कोई अनुमान नहीं लगाऊंगा, कोई कल्पना या कुछ तो जिसका कि मैं विश्वास करता हूँ या इसी तरह से कुछ तो। जब मैं आपको बताता हूँ ऐसा होने जा रहा है तो देखिए, वो पहले मुझे बताएगा और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं कि सारा संसार हिलने डुलने की स्थिति में है, हम अंत समय पर हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने करने की कोशिश की है, भाई शेकरियन आज सुबह कह रहे थे कि किस प्रकार से वो प्रार्थना पंक्ति से होते हुए जाया करते थे और वहां नीचे पहुंचकर और इससे पहले लोग ऊपर आए और उनसे वह प्रार्थना कार्ड ले लेते थे और उन कार्ड को देखते और देखते थे कि क्या उन कार्डों पर वही लिखा है जो मैंने उनको बताया है। वो उनके प्रार्थना कार्ड पर किसी भी तरह की कुछ भी बीमारी लिख देते हैं, आप जानते हैं, और वह बस देखना चाहते थे कि ये सही है या नहीं। उन्होंने कहा उन 100 कार्डों में जो कार्ड उन्होंने जांचे थे उनमें से एक भी गलत नहीं हुआ था, उनमें एक भी गलत नहीं होगा। देखिए, क्योंकि जब तक ये परमेश्वर की ओर से है, यदि मैं वहाँ कभी अपने आप को दिखाने लगता हूँ तब यह ठीक वहाँ आरंभ से ही गलत होगा। ज्यादा समय नहीं हुआ कि एक छोटी लड़की का पिता जो इस समय बैठे हुए सुन रहे हैं मेरे पास आया। लड़की ने एक स्वप्न देखा था, वह बोली भाई ब्रैनम मैंने एक सपना देखा है, इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा बहन मैं नहीं जानता, मुझे इसे पता करना होगा यदि प्रभु मुझे बताएगा। इसलिए मैंने जाकर और प्रभु से पूछने की कोशिश की और उसने मुझे कभी नहीं बताया। वह छोटी लड़की फिर से मेरे पास आई और बोली कि तो अब मेरे सपने का क्या अनुवाद है? मैंने कहा प्रिय यहाँ आओ बैठो। मैंने कहा तुम्हारे पिता और माता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, देखा, और वे वहाँ दूर कनाडा से आए हैं, वे सेवानिवृत्त हुए हैं और मेरे साथ यहाँ परदेसी के समान हैं। जो मैं कहने की कोशिश करता हूँ वे इसका विश्वास करते हैं और मैंने कभी भी किसी से जानबूझकर अपने जीवन में गलत बात नहीं कही है। यदि मैं सोचता हूँ, मैं जान जाता हूँ कि उस सपने का क्या अर्थ है, लेकिन जब तक उस सपने को मैं खुद न देख लूँ और जब तक वो मुझे नहीं बताता है कि इसका क्या अर्थ है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो, यदि मैं ऐसे ही कुछ भी बात बनाकर बताता हूँ तो हो सकता है कभी ऐसा समय आए कि जीवन और मृत्यु के बीच में आप लोगों को मेरी आवश्यकता पड़े और उस समय आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आप मेरा विश्वास करें या नहीं करें। यदि मैं आपसे कोई भी बात प्रभु के नाम से कहता हूँ तब यह सच में वही बात होती है। यही है जिसने मुझे ये बताया है और अब तक इन सारे वर्षों में सारी दुनिया में और संसार के हर कोने में यह कभी एक बार भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि और अब आप जानते हैं मनुष्य इतना अचूक नहीं हो सकता, इसे करने के लिए परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। और अब मेरे पास एक संदेश है जिसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ और बहुत सी बार लोगों के बीच में मेरे विषय में विचार किया गया है, तो हो सकता है किसी ने बस एक मिनट बैठकर और सोचा नहीं और यह समझ लिया कि मैं एक बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ, कि मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूँ और हमेशा ही उन्हें सुनाता रहता हूँ। और यह ऐसा नहीं है, यह बात ऐसी नहीं है, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि प्रेम सुधारात्मक होता है। यदि आपका छोटा लड़का बाहर सड़क पर बैठा हुआ हो और आप कहते हैं प्रिय जूनियर मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ बाहर रहो, लेकिन और मोटर गाड़ियाँ उसके पास से हॉर्न बजाती हुई निकलती हैं और आप उसे अंदर ले आते हैं, वह फिर से बाहर भाग जाता है। क्यों? आपको उसका सुधार करना चाहिए। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप ऐसा करेंगे, आपको करना ही है। यदि आप एक मनुष्य को नदी पर देखते हैं जो एक छोटी सी नाव में है जो बहकर नीचे एक झरने की ओर जा रही है और आप जान जाते हैं कि ये नाव जब झरने पर पहुंचेगी तो ये डूब जाएगी, क्या आप ऐसा कहेंगे जॉन तुम्हें कुछ देर के लिए ये सोचना चाहिए, हो सकता है कि तुम उसे नहीं कर पाओ? यदि मुझे मालूम है कि वह यह नहीं कर पाएगा तो मैं उसको एक झटके से नाव से बाहर खींच लूंगा, यदि मैं कर सकता हूं तो, क्योंकि यह प्रेम है जो ऐसा करता है। और अब इन संदेशों में जो मैं बोलता हूं, मैं कभी किसी शिक्षा या इत्यादि बातों को लाने का प्रयत्न नहीं करता, ऐसा मैं अपनी कलीसिया में करता हूं, लेकिन यहां बाहर इन पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो कि भिन्न संप्रदायों और भिन्न विचारों के हैं। मैं बस एक हल्के रूप में लेने की कोशिश करता हूँ, इसे समझाता हूँ, लेकिन इतना काफी है। यदि आप परमेश्वर की आत्मा से जन्म पाए हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ जाएंगे मेरा क्या अर्थ है। मसीही लोगों के बीच में मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और ये जो भी है। अब आज रात मैं उत्पत्ति का 24वां अध्याय निकालना चाहता हूँ और मैं 12वें पद से पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति के 24वें अध्याय से। सो वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर के वासियों की बेटियाँ जल भरने के लिए निकली आती हैं। सो ऐसा होने दे, जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका, मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि मैं उसमें से पीऊँ, और वह कहे कि पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो वही वो स्त्री हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मुझ पर मेरे स्वामी के प्रति करुणा दिखाई है। और अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उत्पत्ति या बाइबल की पहली पुस्तक है। अब बाइबल के अंत में मैं प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय और 9वें पद को पढ़ना चाहता हूँ। हम जानते हैं यह यहाँ उत्पत्ति का कौन सा वचन है। यदि आप चाहें तो आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। यह परमेश्वर है जो एलीएजर को भेज रहा है, या अब्राहम एलीएजर को भेज रहा है, मुझे क्षमा करें, ताकि इसहाक के लिए एक दुल्हन को चुने। और वह सुंदर रिबिका वहाँ पर आती है और उस प्रार्थना के सही उत्तर में जो कि अब्राहम के दास एलीएजर ने अभी अभी प्रार्थना की थी। अब प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के 9वें पद में, और फिर जिन सात दूतों में से एक मेरे पास आया, जिसके पास सात अंतिम विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे, और मेरे साथ बात करके कहा, इधर आ और मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अब आज रात मैं इसके लिए एक विषय को लेना चाहता हूँ, एक दुल्हन का चुना जाना। और यदि मेरा भाई जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है, यह वो टेप है जिसे आप आगे बढ़कर और बाहर भेज सकते हैं। और अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं केवल इस उपस्थित सभा के लोगों से बोल रहा हूँ, लेकिन ये टेप सारी दुनिया में जाते हैं व्यावहारिक रूप से। ओह, बहुत सारी भाषाओं के लिए इसका अनुवाद का काम किया जाता है, यहाँ तक कि संसार भर के मूर्ति पूजक देशों के लिए भी। हम उन टेप को कलीसिया की समिति पर मुफ्त भेजते हैं और उनका अनुवाद किया जाता है, और सारे अफ्रीका के जंगलों में से होते हुए और भारत में और दुनिया भर में ये टेप जाते हैं। अब एक दुल्हन का चुना जाना, जीवन की कई चीजों में हमें एक चुनाव दिया जाता है। जीवन जीने का तरीका भी अपने आप में एक चुनाव है। हमारे पास अपना खुद का रास्ता लेने के लिए अधिकार होता है, अपने मार्ग स्वयं चुनने के लिए जो हम जीना चाहते हैं। शिक्षा एक चुनाव है, हम चुन सकते हैं कि क्या हम शिक्षित होना चाहते हैं या हम शिक्षित नहीं होना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास एक चुनाव होता है, सही और गलत एक चुनाव है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्त्री, लड़के और लड़की, उन्हें चुनाव करना होता है कि वे सही तरीके से जीने की कोशिश करेंगे या सही तरीके से नहीं जिएंगे। यह एक चुनाव है। चुनाव करना एक बड़ी चीज है। आपकी अनंत मंजिल एक चुनाव है, और हो सकता है आज रात आप में से कुछ लोग उस चुनाव को करें कि आप अपनी अनंतता कहाँ बिताएंगे आज रात, इससे पहले ये सभा समाप्त हो। एक समय आएगा कि यदि आप बहुत बार परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, तब एक बार ऐसा होगा कि आप उसे अंतिम बार ठुकरा देंगे। अनुग्रह और न्याय के बीच में वहाँ एक रेखा होती है, और किसी पुरुष या स्त्री, केवल लड़के या लड़की के लिए यह एक भयानक बात है कि वो इस रेखा के पार कदम को रखे, क्योंकि यदि आप अंतिम उस रेखा को पार कर जाते हैं तो फिर वहाँ वापसी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि यही समय है कि बहुत से लोग अपना निर्णय लें कि उन्हें अपनी ना समाप्त होने वाली अनंतता कहाँ बिताना है। वहाँ हमारे जीवन में एक और चुनाव है जो कि एक जीवन साथी का है, एक नव युवक या नव युवती जो अपने जीवन में कदम रख रहे हैं, उन्हें अधिकार होता है कि अपना चुनाव करें। एक नवयुवक चुनता है, नवयुवती के पास अधिकार है उसे ग्रहण करे या इसे अस्वीकार करे, लेकिन ये फिर भी दोनों ओर से चुनाव होता है, पुरुष और स्त्री दोनों का। उनके पास चुनाव करने का अधिकार है। साथ ही एक मसीह के रूप में आपके पास भी एक चुनाव है। यहाँ अमेरिका में चुन सकते हैं कि यहाँ तक आप किसी भी कलीसिया में जा सकते हैं। ये आपका अपना अमेरिकन विशेषाधिकार है कि आप किसी भी कलीसिया को चुने जिससे आप अपना संबंध रखना चाहते हैं। यह एक चुनाव है। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप मेथोडिस्ट से बैप्टिस्ट या कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट या इत्यादि से बदल बदल कर जाना चाहते हैं, तो आपको कोई यह नहीं कह सकता या दबाव नहीं डाल सकता है कि आप फलाना कलीसिया में ही आएं। यह हमारी स्वतंत्रता है, यही हमारा प्रजातंत्र है। हर व्यक्ति अपने लिए चुनाव को कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता है और यही एक बड़ी बात है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इसे जितना हो सके हम बनाए रखें। आपके पास भी एक चुनाव है। चाहे जब आप इस कलीसिया को चुनते हैं, भले ही आप इस कलीसिया में हो, आप चुनाव कर सकते हैं। आप चाहे ऐसी कलीसिया को चुने जो आपकी अनंत मंजिल तक मार्गदर्शन करेगी। आप एक ऐसी कलीसिया को चुन सकते हैं जिसके पास कोई धार्मिक सिद्धांत हो। आप उस धार्मिक सिद्धांत के लिए सोच सकते हैं कि यही है जो आप चाहते हैं, या दूसरी कलीसिया के पास उनके अपने धार्मिक सिद्धांत होते हैं, और तब वहाँ परमेश्वर का वचन होता है। आपके पास इसके लिए चुनाव है, आपको चुनाव करना होगा। हमारे बीच में चुनाव करने का अलिखित नियम है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये एलिया था। एक समय कार्मेल पर्वत पर निर्णायक मुकाबले के बाद उस संकट की एक बड़ी घड़ी में, जिसमें कि हम ठीक अभी लगभग आ पहुँचे हैं, और शायद आज रात ये आपके लिए भी हो कार्मेल पर्वत के अनुभव की तरह कि हम भी अपना ये चुनाव करें। खुले तौर पर मैं सोचता हूँ अब यह समस्त संसार के लिए है, लेकिन बहुत ही जल्द एक समय होगा कि जब आपको चुनाव करना होगा। और यहाँ आप जो सांप्रदायिक कलीसियाओं के लोग हैं, बस इस पर विश्वास करें कि जब आप चुनाव करने जा रहे हैं तो वो घड़ी ठीक आपके ऊपर है। या तो आप विश्व परिषद के अंदर चले जाएंगे, या तो आप अब एक संप्रदाय नहीं रहेंगे। आपको ये करना ही होगा, और ऐसा चुनाव जल्द ही आ रहा है। और अंतिम घड़ी तक प्रतीक्षा करना भी ये एक खतरनाक बात है, क्योंकि आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, इसमें से आप कभी भी नहीं छूट सकेंगे। आप जानते हैं कि एक समय आता है जब आपको चेतावनी दी जा सकती है, तब यदि आप उस चेतावनी की रेखा के बाहर कदम रखते हैं, तो आप पहले से ही दूसरी ओर चिन्हित हो जाते हैं, छाप लग चुकी है। याद रखें, जब जुबली का वर्ष आता है और वो याजक तुरही लेकर उसे फूंकता है, जिससे कि हर एक गुलाम स्वतंत्र होकर जा सके, लेकिन यदि वह स्वतंत्रता को स्वीकार करने से मना कर दे, तब उसे मंदिर में लेकर जाते थे एक चौखट पर, और सुतारी से उसके कान को छेद दिया जाता था, और तब वो हमेशा के लिए अपने स्वामी की सेवा करता था, और सुनने के प्रतीक के रूप में ऐसा उसके कान पर किया जाता था। विश्वास सुनने से आता है। उसने उस तुरही को सुना, लेकिन वो उस पर ध्यान देना नहीं चाहता था। और बहुत बार पुरुष और स्त्री परमेश्वर के सत्य को सुनते हैं और इसे प्रमाणित और सिद्ध होते हुए देखते हैं, सत्य, लेकिन फिर भी वे उसे सुनना नहीं चाहते। इसका कुछ और कारण है। उन्होंने कुछ और चुन लिया है जो उनके पास है कि उन्हें बाद में उस सत्य और तथ्यों का सामना करना है। इसलिए सुसमाचार के लिए उनके कान बंद हो सकते हैं। वे उसे फिर कभी नहीं सुनेंगे। मेरा आपके लिए ये परामर्श है, जब परमेश्वर आपके हृदय से बात करता है तो आप ठीक तभी प्रतिक्रिया में आ जाएं। एलिया ने उन्हें एक चुनाव दिया तो उन्हें करना था। आज ही तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि परमेश्वर परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो, लेकिन यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो। अब जैसा कि हम देखते हैं, सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक चीजों की प्रतिछाया है, जिनको कि हम आज सुबह अपने इस पाठ में देखने जा रहे हैं, जैसे कि सूर्य और उसकी प्रकृति। यह मेरी पहली बाइबल थी। इससे पहले कि मैं कभी बाइबल का एक भी पन्ना पढ़ता, मैं परमेश्वर को जानता था, क्योंकि बाइबल प्रकृति में चारों ओर लिखी हुई है, और यह बस परमेश्वर के वचन से मेल खाती है। जिस प्रकार से मृत्यु गाड़ा जाना और पुनरुत्थान इस प्रकृति में है और सूर्य का उदय होना यहाँ से वहाँ जाता है, अस्त होता है, मरता है और फिर से उदय होता है, वहाँ बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम प्रतिरूप देख सकते हैं। परमेश्वर प्रकृति में है। इन बातों को हमें इस संदेश के कारण छोड़ना होगा। अब यदि आत्मिक या स्वाभाविक आत्मिक चीजों का प्रतिरूप है, तब स्वाभाविक में दुल्हन का चुना जाना ये एक दुल्हन के चुने जाने का एक प्रतिरूप है, दुल्हन को आत्मिक रूप में। अब यह एक गंभीर बात है जब हम एक पत्नी को चुनने के लिए जाते हैं एक पुरुष, क्योंकि यहाँ एक प्रतिज्ञा होती है कि जब तक हमें मृत्यु अलग न कर दे, हमें इसी प्रकार ही बने रहना चाहिए। और आप यह प्रतिज्ञा परमेश्वर के सामने करते हैं कि केवल मृत्यु ही आपको अलग कर सकेगी। और मैं सोचता हूँ हमें चाहिए एक सही मानसिकता में, यही एक भविष्य की योजना है कि उसे ध्यान पूर्वक अपनी पत्नी का चुनाव करना चाहिए। सतर्क रहें कि आप क्या कर रहे हैं। और एक स्त्री पति का चुनाव कर रही है या एक पति के चुनाव को स्वीकार कर रही है, तो उसे सही में सावधान रहना चाहिए कि वो क्या कर रही है। और विशेषकर इन दिनों में एक पुरुष को सोचना और प्रार्थना करना चाहिए इससे पहले कि वो पत्नी को चुने। मैं सोचता हूँ आज क्या मिला है। आज बहुत से तलाक के मामले होते हैं, जो कि हम अमेरिका में तलाक के मामलों में संसार भर में सबसे आगे हैं। हम बाकी के संसार से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर कहीं और से सबसे अधिक तलाक के मामले हैं इस राष्ट्र में। और यह माना जाता है और समझा जाता है यह एक मसीही राष्ट्र है। क्या ही निंदनीय बात है हमारे तलाक के कोर्ट। मैं सोचता हूँ कि इसका कारण यह है क्योंकि पुरुष परमेश्वर से दूर हो गए हैं और स्त्रियाँ परमेश्वर से दूर हो गई हैं। और हम देखते हैं कि यदि एक पुरुष और एक स्त्री इस मामले में प्रार्थना करें, ना कि बस केवल उन सुंदर आँखों को देखें या चौड़े मजबूत कंधों को देखें या ऐसे ही कुछ चीजों को या दूसरे संसारिक लगाव को, लेकिन पहले परमेश्वर को देखें और कहें कि परमेश्वर क्या ये आपकी योजना है। मैं सोचता हूँ आज बहुत अधिक धोखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में होता है जब बहुत से बच्चे आते हैं। एक सुबह को बहुत से बच्चे मेरे पड़ोस में जो मेरे मित्र हैं, वे आकर और कहेंगे, भाई ब्रहणम आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, आज हमारी एक परीक्षा है, मैंने सारी रात पढ़ाई की है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं सोचता हूँ किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा, यदि आप चाहते हैं, यदि और सुबह को मेज पर यदि आप कह सकते हैं, माँ जॉन की आज परीक्षा है, आओ अभी हम उसके लिए प्रार्थना करें। मुझे लगता है ये हमेशा ही किसी भी दूसरे तरीके से बेहतर हो सकता है, या जैसे किसी और की उत्तर पुस्तिका को देखकर नकल करने से कहीं बेहतर है। मैं सोचता हूँ यदि आप केवल बाहर आकर और उस बात के लिए प्रार्थना करें, और यदि हम उस बात के लिए अध्ययन करें जो हम कर रहे हैं, जब हम विवाह करने जा रहे हैं, जब हम अपनी पत्नी या पति को चुनते हैं, यदि हम इस पर अध्ययन करें, एक पुरुष को व्याकुलता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि वह अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर सकता है। याद रहें, प्रतिज्ञा है कि जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, और वह अपना जीवन गलत चुनाव करके नष्ट कर सकता है, लेकिन यदि वह जानता है क्या है वह गलत चुनाव को कर रहा है और उस स्त्री से विवाह कर रहा है जो कि उसके पत्नी होने के योग्य नहीं है, और वह किसी भी प्रकार से विवाह करता है, तो यह उसका दोष है। यदि स्त्री किसी को एक पति करके ग्रहण करती है और जानती है कि वो उसका पति होने योग्य नहीं, तब यह उसका अपना दोष है, आपके जानने के बाद कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आपको तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से प्रार्थना न कर लें। यही बात एक कलीसिया को चुनने में लागू होती है। अब आपको अवश्य ही कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है जिसमें आप संगति कर रहे हैं। याद रखें, कलीसियाओं में एक आत्मा होती है। अब मैं किसी का आलोचक नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह अनुभव करता हूँ कि मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ और इन्हीं दिनों में किसी दिन मुझे यहाँ से छोड़कर जाना है, और न्याय के दिन मुझे उसका उत्तर देना है। जो कुछ भी मैं आज रात या किसी भी समय कहता हूँ, और इस कारण मुझे पूरी ईमानदारी और गहरी आत्मिक दृढ़ता के साथ गंभीर होना है। लेकिन आप एक कलीसिया में जाएं और यदि आप कलीसिया का व्यवहार देखते हैं, आप बस कुछ समय के लिए पास्टर पर ध्यान दें, तो अक्सर आप यह पाएंगे कि कलीसिया अपने पास्टर जैसा ही व्यवहार करती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हम पवित्र आत्मा के स्थान पर एक दूसरे की आत्मा को नहीं ले रहे हैं। आप ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ एक पास्टर बहुत ही कट्टर और उग्र व्यवहार करता है, आप पाएंगे कि सभा के लोग भी वैसे ही होते हैं। मैं एक ऐसी कलीसिया दिखाऊंगा जहाँ मैंने देखा कि पास्टर खड़ा होता है, अपने सिर को आगे पीछे झटकता है। आप सभा के लोगों की ओर देखना, वे भी वैसे ही करते हैं। आप एक ऐसे पास्टर को देखते हैं जो बिना सोचे समझे सब कुछ स्वीकार कर लेता है, तो आमतौर पर कलीसिया भी वही चीज को करती है। इसलिए यदि मैं कोई कलीसिया चुनता हूँ, तो मैं एक सच्ची मूल आधार बाइबल की पूर्ण सुसमाचार वाली कलीसिया चुनूंगा। यदि मैं किसी एक को चुनता हूँ कि उसमें मैं अपने परिवार को रख सकूँ, चुनाव करता हूँ। मैंने देखा एक दिन वे लड़के भाई शेकरियन के पुत्र और उनके दामाद मुझे एक नव युवक के पास प्रार्थना करने के लिए ले गए। एक गायक, एक बढ़िया युवक था जो कि हाल ही में वापस आया, फ्रेड बर्कर उसका नाम था, जो हाल ही में अपनी छोटी यात्रा से वापस आया था, और उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि फ्रेड मर रहा है। और तब इससे पहले कि मैं उस घर में जाता, दूसरा संदेश आया, वह इस समय कभी भी मर सकता है। और उसने कहा उसके दिमाग में एक चोट आई है और उसे लकवा हुआ है और वो मर रहा था, और उसकी पत्नी चाहती थी कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। और मैंने सोचा, ओह, यदि मैं हवाई जहाज से जाने का यत्न करूं, तो वह मेरे वहां पहुंचने से पहले मर जाएगा, और हो सकता है अब मर गया हो। इसलिए मैंने जल्दी से उस छोटी सी महिला को फोन किया, और हमने फोन को फ्रेड के कान तक पहुंचाया। वह भोजन को निगल नहीं सकता था, वे उसे पाइप के जरिए से खिला रहे थे, और जब हमने उसके लिए प्रार्थना की, उसने कहा, इशारा किया, इस पाइप को उसके गले से बाहर निकालो, वह निगल सकता था। डॉक्टरों ने इसका विश्वास नहीं किया, उन्होंने उसे निकाल दिया और वह निगल सकता था, और वह एक दिन उठकर बैठा हुआ था। एक कलीसिया का चुना जाना। अभी थोड़ी देर पहले ही एक फोन आया, आज सुबह मेरे कलीसिया का एक सदस्य जो कि असल में लुइस विले की बैप्टिस्ट महिला है, वो आज प्रातः मर गई। और मेरी स्थानीय कलीसिया जो एक सच्चे पवित्र व्यक्तियों का झुंड है, आपस में एक साथ एकत्र हुए और उसके शरीर को सड़ने से बचने का लेप लगाया, इससे पहले कि अंतिम संस्कार की क्रिया करने वाले के पास ले जाएं। वहां पर वे उसके पास खड़े होकर और तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक उसमें जीवन वापस नहीं आ गया, और आज रात वो जीवित है। मेरी कलीसिया के प्राचीन लोग क्यों, उन्हें यह विश्वास करना सिखाया गया है कि सारी बातें संभव है, परमेश्वर के पास ईमानदारी से आएं। इसलिए आपको अवश्य ही सही चुनाव करना चाहिए। फिर से उस प्रकार की स्त्री जिसे एक पुरुष चुनता है, ये बात उसके आकांक्षाओं और चरित्र को प्रतिबिंबित करती है। यदि एक पुरुष गलत स्त्री को चुनता है, तो यह उस पुरुष के चरित्र को दर्शाता है, और वह अपने आप को किससे बांधता है, वास्तव में दिखाता है कि उसमें क्या है। एक स्त्री प्रतिबिंबित करती है कि उस पुरुष में क्या है जब वो उसे पत्नी बनाने के लिए चुनता है। यह दिखाता है कि उसके अंदर क्या है, बाहर से वो क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कि वह विवाह किससे कर रहा है। मैं एक व्यक्ति के ऑफिस में जाता हूँ और वो कहता है कि वो एक मसीही है। उसकी दीवारों पर चारों ओर ऐसी वैसी तस्वीरें टंगी हुई हैं, बूगी वूगी संगीत बज रहा है। मैं परवाह नहीं करता वो क्या कहता है, मैं उसकी गवाही का विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसकी आत्मा उन सांसारिक चीजों को ग्रहण कर रही है। क्या हो, कहे तो, यदि वह गायक दल वाली लड़की से विवाह करे, या क्या हो यदि वह कामुक सुंदरी से विवाह करे, या सुंदर आधुनिक मदमस्त लड़की से। यह प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है कि वह अपने दिमाग में भविष्य के लिए कैसा घर बसाने जा रहा है, क्योंकि उसने उसे अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए चुना है, और वह जैसी भी है उसी प्रकार से वह उन बच्चों का पालन पोषण करेगी। इसलिए यह बात प्रतिबिंबित करती है कि उस पुरुष के अंदर क्या है। एक पुरुष जब एक स्त्री को इस प्रकार से लेता है, वह बात केवल यह प्रकट करती है कि वो अपने भविष्य के लिए क्या सोच रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मसीही इस प्रकार से कर सकता है? नहीं श्रीमान, मैं नहीं कर सकता। एक सच्चा मसीही ऐसी सुंदरियों और गायक दल वाली लड़की और कामुक सुंदरी को नहीं ढूंढेगा, वो मसीही चरित्र को ही ढूंढेगा। अब आप सारी चीजों को नहीं पा सकते हैं। एक लड़की हो सकता है जो कि सही में सुंदर हो, और दूसरी लड़की हो सकता है उसका डील लॉल इस एक लड़की से अच्छा न दिखता हो, और आपको एक के लिए दूसरे को बलिदान करना पड़ सकता है। लेकिन यदि इसका डील लॉल एक महिला का नहीं है या एक स्त्री जैसा, और वो मैं परवाह नहीं करता कि चाहे वो सुंदर हो या नहीं, आपके लिए अच्छा होगा कि पहले आप चरित्र को देखें, चाहे वो सुंदर हो या नहीं हो। अब क्योंकि यह हो रहा है, यदि एक मसीही एक पत्नी को चुनता है तो उसे एक सच्ची फिर से जन्म पाई हुई महिला को चुनना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि वो कैसी दिखती है। यही है जो वो है, जो उसे बनाता है, और तब फिर से यह उसके अपने धार्मिक चरित्र को प्रतिबिंबित करता है, और यह बात प्रतिबिंबित करती है कि उसके दिमाग में क्या है और उसके परिवार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसके परिवार का पालन पोषण ऐसी स्त्री के द्वारा किया जाएगा उसके घर के भविष्य की योजनाओं के लिए। यदि वो आधुनिक मदमस्त कामुक सुंदरी से विवाह करता है तो वह उससे कैसी अपेक्षा कर सकता है? वह व्यक्ति किस प्रकार के घर पाने की अपेक्षा कर सकता है? और वो ऐसी लड़की से विवाह करता है जिसके अंदर अपने विषय में इतनी भी नैतिकता ना हो कि वो घर पर ही रहे और घर की देखभाल करे, और वह बाहर किसी के ऑफिस में काम करना चाहती है, तो वह किस प्रकार की गृहिणी होगी? आप बच्चों की देखभाल करने वालों के पास रखेंगे और बाकी की हर एक चीज। यह सच है। अब मैं काम करने वाली आधुनिक स्वभाव वाली स्त्रियों के पक्ष में नहीं हूँ। जब मैंने वर्दी को पहने हुए मोटरसाइकिल पर पुलिस के रूप में स्त्रियों को शहर में घूमते देखा, यह किसी भी शहर के लिए एक लज्जा की बात है जो स्त्रियों को ऐसा करने देता है। देखा, देखा। जबकि बहुत से पुरुष बेरोजगार हैं, यह हमारे शहर के आधुनिक विचार को दर्शाता है, यह अपमानजनक बात को दिखाता है। हमें स्त्रियों को इस तरह से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। उनका इस तरह से बाहर जाना यह उनका काम नहीं है। जब परमेश्वर ने एक पुरुष को एक पत्नी दी तो उसने उद्धार को छोड़ उसे सबसे अच्छी चीज दी जो वो दे सकता था। लेकिन जब कोई स्त्री पुरुष का स्थान लेने की कोशिश करती है तब वो स्त्री उसके लिए सबसे बुरी चीज बन जाती है। अब यह सही बात है। देखा, अब हम इस बात को आत्मिक में लागू करके देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि यह खराब बात है। आप सोचते हैं यह खराब बात है, लेकिन यह सत्य है। हम चिंता नहीं करते कि यह कितनी खराब बात है। हमें सच्चाई का सामना करना है। यही है जो बाइबल सिखाती है। देखा, अब हम यहाँ परमेश्वर की आत्मिक योजना को स्पष्ट रूप से देखते हैं। परमेश्वर की योजना उसके भविष्य के घर के लिए उसकी भविष्य की दुल्हन के साथ है, अब दृश्य में आ रही है। यदि पुरुष एक कामुक सुंदरी से विवाह करता है तो आप देख सकते हैं कि वह भविष्य के लिए किस बात के लिए देख रहा है। यदि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है जो घर में रहती है तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने भविष्य के लिए क्या देख रहा है। और मैं एक बार यह सुनने में बहुत ही बुरा लगता है, और मैं बस इस बात को कहने के लिए महसूस कर रहा हूँ, और मैं अक्सर यदि मैं कुछ बात को कहने के लिए महसूस करता हूँ तो मुझे इसे कह देना चाहिए, और यही अक्सर परमेश्वर का तरीका होता है। मैं एक पशुपालक के साथ जाया करता था जिसके साथ मैं काम करता था कि गाय बैल को खरीदें, और मैंने देखा कि यह बुजुर्ग व्यक्ति इससे पहले कि उसकी बोली लगाए वह ठीक उस बछड़े की मुख की ओर देखा करता था। तब वो उसके मुख को घुमाकर आगे और पीछे देखा करता था। मैं उसका अनुकरण करता और उसे देखा करता और वो गाय को ऊपर और नीचे देखा करता, क्या वह दिखने में सही लगती है गद काठी में। तब वह घूम कर और उसके मुख की ओर देखता और कभी कभी वह अपना सिर हिलाकर और आगे चल देता। मैंने कहा, जेफ, मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो बिल। और मैंने कहा, आप क्यों हमेशा ही उस गाय के मुख की ओर देखते हो? मैंने कहा, वो ठीक दिखाई पड़ती है, एक अच्छी खासी भारी गाय। उसने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लड़के, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। जब उसने मुझे बताया तो बाद में मुझे इस बात का अनुभव हुआ। उसने कहा, मैं परवाह नहीं करता कि उसकी कद काठी कैसी है, वह ऊपर से खुर तक अच्छी गाय हो सकती है। लेकिन यदि उसके चेहरे पर जंगली घूर कर देखने के भाव हैं, तो तुम उसे कभी भी नहीं खरीदना। मैंने कहा, ऐसा क्यों जेफ? तो कहा, पहली चीज यह है, कहा, वह कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। और उसने कहा, अगली चीज यह है कि वह अपने बछड़े के लिए कभी भी माँ नहीं बनेगी। और कहा, वे उसे अभी बाड़े में रखते हैं, इसी कारण वो हटी कट्टी है। ऐसी जंगली घूर कर देखने वाली को तुम खुला छोड़ दो, वह भागते फिरते अपने आप को मार डालेगी। मैंने कहा, आप जानते हैं, मैंने एक प्रकार से कुछ तो सीख लिया है। मैं सोचता हूँ ये बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। सही है, सही है। वो जंगली घूर कर देखने के भाव, मदमस्ती दिखने वाली, अच्छा होगा कि आप उससे दूर ही रहें लड़कों। वे सब जो नीले रंग की चीजें हैं, वे अपनी आँखों के ऊपर लगाती हैं। और मैं नहीं, मैं उसे कभी नहीं चाहता। मैं नहीं सोचता कि यह एक मसीही के लिए उचित है। मैं परवाह नहीं करता कि टेलीविजन और अखबार कितना भी कहें कि यह सुंदरता है, यह तो बहुत ही भयानक बद्दी दिखने वाली चीज है जो कभी मैंने अपने जीवन में देखी होगी। जब मैंने पहली बार ऐसा देखा क्लिफ्टन कैफेटेरिया में, एक सुबह नाश्ते के समय मैंने उनमें से कुछ नवयुवतियों को आते हुए देखा। भाई ऑर्गन ब्राइट और मैं ठीक तभी अंदर आए थे और वो सीढ़ी से नीचे चले गए थे और मैंने उस लड़की को अंदर आते देखा और मैंने सोचा, ठीक है, मैं नहीं जानता, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। ये कुछ इस प्रकार का था, ओह, ये ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रोग लग गया हो। आप समझ रहे हैं, बस एक प्रकार से अजीब सी दिख रही थी। मैं मजाक बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप जानते हैं, मैंने कोड़ को देखा है। मैं एक मिशनरी हूँ, आप जानते हैं, मैंने हर प्रकार की अनूठी चीजें देखी हैं कि किस प्रकार से बीमारियाँ। और मैं चलकर उस युवा महिला के पास जा रहा था और उसे बताने जा रहा था कि मैं एक सेवक हूँ, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्या आप अपने लिए मुझसे प्रार्थना करवाना पसंद करेंगी? और इस प्रकार की चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। और तब वहाँ दो या तीन महिलाएं और भी वहाँ आ गई अंदर। मैं तब एक प्रकार से पीछे हट गया और रुका रहा और भाई ऑर्गन ब्राइट वहाँ आ गए। तो मैंने कहा, भाई ऑर्गन ब्राइट, हो सकता है वो यहाँ पर हो। मैंने कहा, उस स्त्री के साथ क्या मामला है? देखा। और उसने कहा, उसने चेहरे को रंगा है। मैंने कहा, ओह प्रभु परमेश्वर, देखा। मैंने सोचा कि उसे किसी अलग थलग स्थान या कहीं तो और रखना चाहिए ताकि सारी दूसरी महिलाओं में इसे फैलने से रोका जा सके। लेकिन आप जानते हैं, आपको योजना बनानी है। देखो, प्रार्थना करें जब आप चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके द्वारा प्रतिज्ञा के वचन को देखते हैं। वो दुल्हन जिसे एक पुरुष चुनेगा, उस पुरुष के चरित्र को प्रतिबिंबित करने जा रही है। यह प्रतिबिंबित करती है कि उस पुरुष में क्या है। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पुरुष जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, कुछ तो इस प्रकार की स्त्री को पत्नी होने के लिए चुनेगा? भाई, मैं बस ऐसा कहीं नहीं देखता। अब हो सकता है कि मैं बस बूढ़ा सनकी हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं इस बात को नहीं समझ सकता हूँ। देखा, ध्यान देना, क्योंकि यह प्रतिबिंबित होने जा रहा है कि उस पुरुष में क्या है। वो भविष्य में उसका घर बसाने में उसकी सहायता करने जा रही है। अब फिर जब हम इसको अभी कुछ क्षणों के लिए आत्मिक रीति पर बदलने जा रहे हैं, और जब आप एक कलीसिया को देखते हैं जो संसार में है, संसारिक तौर पर व्यवहार करती है, संसार की चीजों की अपेक्षा करती है, संसार में जुड़ी हुई है, परमेश्वर की आज्ञाओं को ऐसा मानती है जैसा कि उसने कभी उन्हें लिखा ही नहीं था, तब आप बस कल्पना कर सकते हैं कि मसीह इस प्रकार की दुल्हन को नहीं लेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इस आधुनिक कलीसिया को अपनी दुल्हन के रूप में लेगा? नहीं मेरे प्रभु, मैं नहीं, मैं शायद ही ऐसा देख सकता हूँ। नहीं, याद रखिए, अब एक पुरुष और उसकी पत्नी एक हैं। क्या आप अपने आप को इस तरह के व्यक्ति के साथ जोड़ना चाहेंगे? यदि आप चाहेंगे तो निश्चय ही मेरे विश्वास को आपके अंदर निराशा ही मिलेगी। और फिर परमेश्वर के विषय में कैसा रहेगा कि वो अपने आप को इस प्रकार की चीज के साथ जोड़े जो कि नियमित सांप्रदायिक वेश्या है? क्या आप सोचते हैं कि वो ऐसा करेगा? भक्ति का भेष तो धरते हैं, परंतु उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके अंदर अवश्य ही उसका चरित्र होना चाहिए। एक मूल सच्चे नया जन्म प्राप्त कलीसिया के अंदर वही चरित्र होना चाहिए जो मसीह में था, क्योंकि पति और पत्नी एक हैं। और यदि यीशु ने केवल वही किया जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसके वचन का पालन किया और उसके वचन को प्रकट किया, उसकी पत्नी के अंदर भी उसी प्रकार का चरित्र होगा। वह किसी भी तरह से एक संप्रदाय नहीं हो सकती, क्योंकि तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी कहना चाहें नहीं, वो कहीं तो एक बोर्ड के द्वारा नियंत्रित होती है जो उसे यह बताएगा कि उसे क्या करना है और वो क्या नहीं कर सकती। और बहुत सी बार सच्चे वचन से लाखों मील दूर होगी। यह बहुत बुरी बात है कि हम कभी भी अपने सच्चे अगुवाई करने वालों से दूर चले जाते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है ताकि कलीसिया की अगुवाई करे। उसने कभी भी राज्य के पुरोहितों को नहीं भेजा, उसने कभी भी बिशप, कार्डिनल, याजक, पोप को नहीं भेजा। उसने कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है कि कलीसिया की अगुवाई करे। जब वो पवित्र आत्मा आता है तो वह तुम्हें सारे सत्य में अगुवाई करेगा, इन बातों को तुम पर प्रकट करेगा जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा और आने वाली बातों को तुम्हें दिखाएगा। पवित्र आत्मा को यही करना था। अब आधुनिक कलीसिया इससे घृणा करती है, वे इसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो भला मसीह की दुल्हन कैसे हो सकती है? आज के लोग एक आधुनिक संप्रदाय को चुनते हैं। ये क्या करता है? यह केवल उनके वचन के प्रति कम समझ को प्रतिबिंबित करता है। मेरा मतलब यहाँ किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं है, लेकिन मेरा अर्थ यह है कि यह आपके हृदय की गहराई में चला जाए जब तक आप इसे देख न लें। मैंने बहुत से जोड़ों का विवाह लगाया है, लेकिन यह हमेशा मुझे दुल्हन और मसीह की याद दिलाता है। कुछ समय पहले मैंने एक विवाह लगाया था। यह मेरे जीवन में इसका एक बहुत ही विशेष महत्व था। यह बहुत वर्षों पहले की बात है जब मैं बस एक युवा सेवक ही था। मेरा भाई उस PWA में काम करता था। मैं नहीं जानता कि अभी तक ये बात किसी को याद होगी या नहीं। कोई भी जो मेरी आयु का है, और यह एक सरकारी परियोजना थी, और मेरा भाई लगभग 30 मील दूर काम करता था। वे एक सिंचाई परियोजना के लिए कुछ झीलों को खोद रहे थे, और वहाँ एक लड़का उसके साथ काम कर रहा था जो इंडियानापोलिस से था, लगभग जेफरसन विले से 200 मील ऊपर जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब रहता था। और वहाँ एक जिसने एक दिन मेरे भाई से कहा, उसने कहा मैं चाहता हूँ यदि मेरे पास प्रचारक को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा तो मैं विवाह करूँगा। उसने कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने विवाह का लाइसेंस ले सकूं, लेकिन कहा मेरे पास इतना नहीं है कि प्रचारक की फीस भर सकूं। डॉक ने कहा, भाई मेरा भाई एक प्रचारक है और वो तुम्हारा विवाह लगा सकता है। उसने कहा वह लोगों से इस तरह के कामों के लिए कभी पैसा नहीं लेता है। उसने कहा क्या तुम मुझसे पूछोगे यदि वो मेरा विवाह करवा दे? तो उस रात मेरे भाई ने मुझसे पूछा। मैंने कहा यदि वह इससे पहले कभी भी विवाहित नहीं था, दोनों में से कोई भी, और वे हर एक चीज सही है? उसने कहा ठीक है, हाँ मैं उससे पूछूंगा। और मैंने कहा यदि ऐसा है तो उससे कहना यहाँ पर आ जाए। सो जब शनिवार का दिन आया तो वो लड़का वहाँ पर आया। जब भी मैं इस बात को याद करता हूँ तो मेरे लिए यह एक बड़ी बात रही है। मैं दोपहर को वर्षा हो रही थी और एक पुरानी शेवरलेट कार सामने आकर खड़ी हुई जिसकी सामने की बत्ती के तार निकले पड़े थे, ये ऊपर की ओर थे। ये बस कुछ समय बाद की बात है जब मैं अपनी पत्नी को खो चुका था और मैं दो छोटे कमरे वाले मकान में रह रहा था और डॉग भी वहाँ मेरे साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और एक लड़का कार से बाहर निकला और वह निश्चय ही मुझे दूल्हे जैसा नहीं लग रहा था, या मैं सोचता हूँ किसी को भी नहीं लग रहा था। मैं समझता हूँ, जी हाँ, मैं $1.50 में सुंदर अच्छा सा जूते का जोड़ा खरीद सकता था। और उसने जो जूता पहन रखा था वह घिस चुका था और उसकी पैंट भी बहुत ही ढीली ढाली थी और उसने वो पुरानी सी नरम सूती कपड़े की जैकेट पहन रखी थी। मैं नहीं समझता कि आप में से कुछ पुराने लोगों को याद होगा, ऐसा दिखाई दिया कि जैसे यह बिना धोए हुए ही कपड़े धोने की मशीन में से निकाली गई थी और उस पर धारियां सी पड़ी हुई थी, इस तरह से बंधा हुआ और कोना ऊपर की ओर था। और एक छोटी सी महिला एक ओर से उतरी और एक छोटी सी ओह उनमें से कुछ छोटे चौकोन डिजाइन वाली पोशाक पहनी थी। मैं नहीं जानता, एक बार मैंने उस तरह के कपड़े का नाम लेने में गलती कर दी, गिंगहम। मैं सोचता हूँ कि इसे यही कहते हैं और सो ये एक, मैंने इसे फिर से गलत बोल दिया। मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। और मैंने कहा, वो कार से बाहर निकली और वे दोनों सीढ़ियों पर से ऊपर आए और जब वे अंदर चलकर आए वह बेचारी छोटी सी चीज, वह मुझे लगता है कुल मिलाकर बस उसने एक लंबी सी स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में जूते ना के ही बराबर थे। वो इंडियानापोलिस से सहयात्री होकर वहाँ पर आई थी। उसके छोटे बाल नीचे लटक रहे थे, पीछे एक प्रकार की लंबी चोटी उसकी पीठ के नीचे तक थी, बहुत ही युवा दिखाई दे रही थी। और मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारी उम्र इतनी है कि विवाह कर सको? वह बोली, जी हाँ श्रीमान। और बोली, मेरे पास मेरे पिता और माता की लिखित अनुमति है। उसने कहा, मुझे अपना लाइसेंस लेने के लिए इसे यहाँ के कोर्ट को दिखाना था। मैंने कहा, तो ठीक है। मैंने कहा, इससे पहले कि हम इस विवाह के रस्म को करें, मैं आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। वे बैठ गए। लड़का कमरे में इधर उधर चारों ओर देख रहा था, उसे बाल काटने की बहुत ही आवश्यकता थी और वह कमरे में लगातार चारों ओर देखे जा रहा था। वह मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, पुत्र, मैं चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे सुनो। बोला, जी हाँ श्रीमान। और मैंने कहा, क्या तुम इस लड़की से प्रेम करते हो? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैं करता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम इससे प्रेम करती हो? जी हाँ श्रीमान, मैं करती हूँ। मैंने कहा, अब क्या तुम्हारे पास स्थान है जहाँ तुम इसे विवाह होने के पश्चात लेकर जाओगे? कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, तो ठीक है। अब मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ PWA में काम करते हो। और उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, वहाँ उसे सप्ताह में लगभग $12 मिलते थे। मैंने कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम इसके जीवन यापन के लिए कुछ कर सकते हो? उसने कहा, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं सब कुछ करूँगा। और मैंने कहा, तो ये अच्छी बात है। और मैंने कहा, बहन, क्या हो यदि इसकी नौकरी छूट जाती है, तुम क्या करोगी? मम्मी पापा के पास घर वापस चली जाओगी? वो बोली, नहीं श्रीमान, मैं इसी के साथ रहूंगी। और मैंने कहा, श्रीमान, यदि आपके 3 या 4 बच्चे हो जाएं और उन्हें खिलाने को कुछ भी नहीं हो और तुम्हारे पास कोई काम ना हो, तो तुम क्या करोगे? उसे दूर भेज दोगे? वह बोला, नहीं श्रीमान, मैं संघर्ष करता रहूंगा। हम किसी भी तरह से इसे कर ही लेंगे। मुझे कुछ तो महसूस हुआ और मैंने देखा कि यह सच में इससे प्रेम करता है और वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उनका विवाह कर दिया। तब मैंने सोचा कि वो उसे कहाँ पर ले गया। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने भाई डॉक से पूछा, ये कहाँ है? उसने कहा, वहाँ न्यू एल्बानी चले जाएं, एक छोटा शहर जो हमसे नीचे की ओर है, और वहाँ नीचे नदी के पास जहाँ मैंने कुछ वहाँ टीन की छत बिछाई हुई थी जब मैं एक लाइनमैन था, तो वहाँ रोज जाया करता था। इसलिए जब बाकी के लोग वे सारे वहाँ बैठकर चुटकुले सुनाते थे और बातें किया करते थे, तो मैं ट्रक में बैठकर वहाँ नदी की ओर चला जाता और उस समय के दौरान वहाँ प्रार्थना करता था और उस बड़ी टीन की छत के टुकड़े के नीचे मेरी बाइबल पढ़ता था। जहाँ पर पुराने लोहे का काम हुआ करता था वहाँ पर ढेर सारे पुराने मालगाड़ी के डिब्बे रखे हुए थे और इस व्यक्ति ने वहाँ जाकर उनमें से एक बड़े से डब्बे को ले लिया था और उसमें एक दरवाजे को लगा दिया था और उसने अखबार और टैकी बटन लगा दिए थे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि टैकी बटन क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कैंटेकी का रहने वाला नहीं है। ये ऐसा है, एक गत्ते का टुकड़ा लें, इसमें एक छोटी सी पिन को एक छोटी सी डंडी को डाल दें और इसे इसके अंदर दबा दें। इसे एक टैकी बटन कहते हैं। इस तरह से उन्होंने इसे चारों ओर लगा लिया था और वह उस लोहे के कबाड़ में से जाकर और वहाँ से कुछ सामान को लाकर और ऊपर आने के लिए एक सीढ़ी बनाई थी और कुछ पुराने बक्सों को लिया, एक टेबल बना लिया था। और एक दिन मैंने सोचा मैं वहाँ पर जाकर और देखूँगा कि वे लोग किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके लगभग 6 महीने पहले मैंने ईवी नाइट की बेटी का ईटी स्लाइडर के बेटे के साथ विवाह लगाया था। ईवी नाइट जो वहाँ ओयो नदी के क्षेत्र में सबसे धनी लोगों में से एक है और ओह वे वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, इन पूर्व निर्मित घरों और इत्यादि को बनाते हैं और स्लाइडर ईटी स्लाइडर जो कि रेत और कंकड़ की कंपनी है, ये करोड़पति के बच्चे थे और मैंने उनका विवाह लगाया और मैं एक स्थान पर वापस गया। लगभग 2 हफ्तों तक इसका अभ्यास किया, फिर एक छोटे कमरे में जाकर एक तकिए पर घुटनों के बल बैठा और सारी धूमधाम और हर एक चीज जिसमें से होकर मैं कभी नहीं गया, लगभग उनमें से होकर जाना पड़ा उस जोड़े के विवाह के लिए। और जब वे बाहर आए, क्यों वे ये दूसरा छोटा सा जोड़ा वहाँ छोटे से पुराने कमरे में खड़ा था जहाँ पास ही में एक छोटा सा सोफा और फोल्डिंग पलंग था, लेकिन उन दोनों जोड़ों का विवाह एक ही विधि से हुआ था। और तब एक दिन मैंने सोचा मैं वहाँ नीचे जाऊँगा और इस धनवान जोड़े से मिलूंगा। उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनके पिता करोड़पति थे, उन्होंने उनके लिए शानदार घर बनाया था। खुले तौर पर यह ईवी नाइट ऊपर यहाँ पहाड़ी पर रहते थे, उनके हवेली के दरवाजे पर 14 कैरेट के कुंडे लगे हुए थे, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वे किस प्रकार के घर में रहते थे। उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें हर वर्ष एक अच्छी कैडिलैक कार मिलती थी और बस केवल वे ही उनके बच्चे थे और जो भी वे चाहते थे उनके पास सब कुछ था। जब मैं एक दिन वहाँ पर चलकर गया, अब मेरी उनसे जान पहचान ऐसे हुई थी, उनका एक मित्र मेरा अच्छा मित्र था, हम एक दूसरे के गहरे मित्र थे और इस तरह से मेरी उनसे जान पहचान हुई जब वे मुझसे अपना विवाह करवाना चाहते थे। इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ चला गया और मैंने अपनी पुरानी फोर्ड कार को बाहर खड़ा किया, बाहर निकलकर और सीढ़ियों पर चलकर वहाँ गया और मैं उनके काफी पास आ गया और मैंने उनकी बातों को सुना और वे असल में झगड़ रहे थे, वे एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे। वे कहीं तो नाचने गए थे, वह बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह एक प्रकार से इन सुंदर रानियों में से एक थी। उसने उस क्षेत्र में बहुत से इनाम जीते थे और सुंदरता की रानी होने के कारण उसने बहुत सी कार और चीजें जीती थी और मैंने उनकी ओर देखा और एक एक कोने में बैठा था और दूसरा दूसरे कोने में बैठा था और किसी लड़के के विषय में झगड़ रहे थे कि उसने किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ नाचा था या ऐसे ही कुछ तो था। जब मैं ऊपर आया तो वे तुरंत उछलकर खड़े हो गए और फर्श पर एक दूसरे को पकड़ लिया और उनके हाथ पकड़े पकड़े फर्श पर ही दरवाजे की ओर बढ़ते हुए आए, कहा क्यों नमस्ते भाई ब्रैनम, सब कैसे चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आप सब लोग कैसे हैं? और ओह उसने कहा मैं हम बहुत खुश हैं, क्या हम नहीं हैं प्रिय? और वह बोली हाँ प्रिय। देखा, अब देखिए आप कुछ तो दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वास्तविक नहीं है। अब आप रंगे हुए आग के चित्र से गर्म नहीं हो सकते, जैसे कि इनमें से कुछ कलीसियाएं पेंटिकॉस्ट को रंगने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 1000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले हुआ था। आप रंगे हुए आग के चित्र से गर्म नहीं हो सकते हैं, पेंटिकॉस्ट तो आज भी वैसा ही वास्तविक है जैसा कि ये तब था। देखा, जी हाँ आग अब भी गिर रही है, ये रंगे हुए आग का चित्र नहीं है, यह एक वास्तविक आग है। तो वे बस वहाँ सामने थे। देखा, मैं इस प्रकार से नहीं जीना चाहूँगा। अच्छा, मैंने सोचा तुम जानते हो ठीक वहाँ नीचे चट्टान के ऊपर और वहाँ नदी पर, वहीं पर जहाँ पर यह दूसरा जोड़ा बसा हुआ है, मैंने सोचा एक दिन शनिवार दोपहर को मैं वहाँ जाकर और देखूँगा कि उन लोगों का कैसा चल रहा है। इसलिए मेरा चेहरा गंदा था और मैं पूरी तरह से गंदा था और मेरे साथ मेरे औजार थे। मैंने सोचा मैं चुपचाप से उनके पास जाऊंगा और मैं धीरे से वहाँ चला गया, जैसे कि मैं यह जांच रहा हूँ कि कहीं बिजली की वजह से प्रवाह टूट तो नहीं गया है या ऐसे ही कुछ। और जब मैं नदी के किनारे टेलीफोन की तार बिजली के तार के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वहाँ पर वो पुरानी चेवरलेट कार सामने खड़ी थी जब मैंने उनका विवाह लगाया था, उसके एक वर्ष के बाद की बात है, और वहाँ एक उनका दरवाजा खुला हुआ था और मैं उन्हें बात करते हुए सुन सकता था। तो यह एक ढोंगी की तरह दिखाई देता है, लेकिन मैं काफी नजदीक चला गया, यहाँ तक कि मैं सुन सकता था देखो कि वे क्या बोल रहे हैं। वहाँ खड़ा रहा और मैं बस अपने लिए जानना चाहता था। मुझे यह जानना और पक्का करना अच्छा लगता है कि मैं जिस बात पर बोल रहा हूँ उसे ठीक से समझता हूँ। इसी तरह से मैं ऐसा परमेश्वर के वचन के विषय में करता हूँ। क्या यह सत्य है या यह सत्य नहीं है? क्या वह अपने वचन को पूरा करेगा या वो अपने वचन को पूरा नहीं करता है? वह अपने वचन को पूरा नहीं करता है तब वो परमेश्वर नहीं है। देखा, वह अपने वचन को पूरा करता है तब वो परमेश्वर है। देखा, और इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि वे कैसे साथ साथ चल रहे हैं। और मैं किनारे पर धीरे से चला गया, बहुत ही आसानी से। मैंने उसे कहते सुना, ओह प्रिय, मैं इसे तुम्हारे लिए लेना चाहता था, बहुत ही इच्छा थी। उसने कहा, अब देखो हृदय प्रिय। उसने कहा, यह पोशाक बिल्कुल ठीक है। उसने कहा, क्यों, यह बस अच्छी दिख रही है। कहा, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन तुम देखो। मैं धीरे से और पास चला गया ताकि मैं दरार में से होकर देख सकूं जहाँ माल डिब्बे का दरवाजा खुला हुआ था और वो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो उसकी गोद में थी और उसका हाथ उसके चारों ओर था और उसका हाथ उसके चारों ओर था और उसके पास एक पुरानी ढीली सी टोपी थी और उसने उसके ऊपर एक छोटा सा छेद कर रखा था, ऊपर का हिस्सा दबा दिया था और उसमें से अपना वेतन का चेक निकाला। उसने इसे मेज पर रख दिया, कहा, किराने के सामान के लिए इतना, बीमा के लिए इतना और कार के लिए इतना। और वे अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उनकी बातों से पता चला उसने वहाँ एक छोटी सी पोशाक को एक दुकान में देखा था। कुछ हफ्तों से वो इसे लेने के लिए देख रहा था जिसकी कीमत $1 और कुछ तो थी। वह इसे खरीदना चाहता था। कहा, तो ठीक है प्रिय, तुम इसमें बहुत सुंदर दिखोगी। और उसने कहा, लेकिन प्रिय, मेरे पास एक पोशाक है, मुझे सचमुच इसकी आवश्यकता नहीं है। देखा, और वह छोटी रानी, और मैं पीछे हट गया और ऊपर की ओर देखा। मैं दूसरे घर की चोटी पर उस मीनार को देख सकता था। मैं वहाँ खड़ा हुआ और कुछ मिनटों तक देखता रहा। मैंने सोचा, कौन सा व्यक्ति धनवान है। मैंने सोचा, यदि बिल ब्रैनम, तुम कौन सी जगह को चुनना चाहोगे, तुम कहाँ जाना चाहोगे? मैं अपने लिए वह सुंदर चीज जो उस पहाड़ की चोटी पर है उसे नहीं लूंगा। मैं इस चरित्र को लूंगा जो यहाँ एक सच्ची गृहिणी के रूप में है, कोई जो मुझे प्रेम करती हो और मेरे साथ ही रहे, कोई एक जो घर को बसाने का प्रयास करे और जो सजावट या दिखावे के लिए आपको हर एक चीज के लिए न निचोड़े, बल्कि कोई जो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा एक भाग हो। यह बात हमेशा ही मेरे साथ रही कि वो किस तरह से था। एक ने सुंदर लड़की चुनी, दूसरे एक ने चरित्र को चुना। अब केवल यही वो तरीका है कि आप चुन सकते हैं। पहले चरित्र को देखिए और उसके बाद यदि आप उसे प्रेम करते हैं तो अच्छी बात है। ध्यान दें, परमेश्वर ने पहले आदम के पास उसकी पत्नी को चुनने के लिए कोई चुनाव नहीं था, उसके पास कोई चुनाव नहीं था। परमेश्वर ने केवल उसके लिए एक को ही बनाया था और उसको उसे चुनना नहीं था। इसलिए हम पाते हैं कि उसने उसे परमेश्वर के वचन से भटका दिया। उसे इस विषय पर प्रार्थना करने को नहीं मिला। वह आपकी या मेरी तरह नहीं था, उसे चुनाव करने को नहीं मिला। और फिर ऐसा करने के द्वारा उसने उसे परमेश्वर के पुत्र होने के उसके सही स्थान से हटा दिया और उसने उसे जीने का एक और आधुनिक तरीका दिखाने के द्वारा ऐसा किया। कुछ तो ऐसा जो उन्हें वास्तव में नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस स्त्री के चरित्र ने दिखाया कि वो गलत थी। उसका अभिप्राय और उद्देश्य पूरी तरह से गलत था और उसके तर्क के द्वारा उसे यकीन दिलाया कि ये आधुनिक नया उजियाला है जो उसने पाया था, जो कि परमेश्वर के वचन के विपरीत था, जो जीने के लिए एक उत्तम तरीका था। और आज कितनी स्त्रियां और इसी तरह से पुरुष भी, जो कि अच्छी स्त्री को परमेश्वर से खींचकर दूर ले जा सकते हैं या अच्छे पुरुष को परमेश्वर से खींचकर दूर ले जा सकते हैं, उसे बताने का प्रयास करते हुए कि यह धर्म, तुम पेंटिकॉस्टल लड़कों, यही वो धर्म है। वे कहते हैं, ओह, यह पुराने चलन का धर्म है, यह पुराने विचारों वाला धर्म है, तुम इसका विश्वास मत करना। अच्छा होगा आप पूरी लगन से प्रार्थना करें इससे पहले कि आप उस लड़की से विवाह करें। मैं परवाह नहीं करता कि वह कितनी सुंदर है। यही बात पुरुषों के लिए भी है। हवा ने उसे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध राजी कर लिया और उससे ऐसा कुछ तो करवाया जो उसे नहीं करना चाहिए था और इसके द्वारा ही सारी मानव जाति के लिए मृत्यु का कारण बना। इसलिए बाइबल स्त्री को परमेश्वर के वचन को सिखाने या प्रचार करने या किसी भी प्रकार से संभालने को मना करती है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सी बहनें कहती हैं कि प्रभु ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है। मैं आपके साथ विवाद नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वचन कहता है कि आपको यह नहीं करना है। स्त्री उपदेश न करे या कोई अधिकार को नहीं जताए, लेकिन शांत रहे। भाई आप कहती हैं कि प्रभु ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, मैं इसमें जरा भी संदेह नहीं करता। क्या उस रात आपने मेरा संदेश बालाम के विषय में सुना था? बालाम ने पहले ही सीधा साफ परमेश्वर का निर्णय सुना कि ऐसा मत करना, लेकिन वह मूर्खता के काम को करता ही रहा। यहाँ तक अंत में परमेश्वर ने कह दिया कि जाकर इसे कर ले। हो सकता है परमेश्वर आपको प्रचार करने की अनुमति दे दे। मैं नहीं कहता कि उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यह उसके मूल वचन और योजना के अनुसार नहीं है, लेकिन उसको आज्ञा के अधीन होना है, जैसा कि व्यवस्था भी कहती है। ये सत्य है, इसलिए उसे यह नहीं करना चाहिए। अब फिर से ध्यान दें किस प्रकार से स्वाभाविक दुल्हन आत्मिक का प्रतीक है। वचन कहता है कि स्त्री पुरुष के लिए बनी है, ना कि पुरुष स्त्री के लिए बना है। अब मैं थोड़ी देर में बोलूंगा और क्यों मैं मसीह की दुल्हन पर बोलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी बुनियादी बातें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्त्री पुरुष के लिए बनी थी और ना ही पुरुष स्त्री के लिए। यही कारण है कि पुरानी व्यवस्था के नीचे बहुविवाह वैध बात थी। दाऊद को उसकी 500 पत्नियों के साथ वहाँ बैठा हुआ देखते हैं, और बाइबल ने कहा वह परमेश्वर के अपने हृदय के अनुसार एक मनुष्य था, 500 पत्नियों के साथ और सुलेमान 1000 के साथ। लेकिन उन स्त्रियों में से कोई भी स्त्री दूसरा पति नहीं कर सकती थी। आपके पास मेरा विवाह और तलाक का टेप है। ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं टूसान में पहाड़ की चोटी पर मैं इस विषय में प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने ये देखने के लिए विद्यालय की छुट्टी कर दी, ताकि उस अग्नि के स्तंभ को पहाड़ के चारों ओर घूमते और भंवर की तरह भीतर जाते हुए देख सके। आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, यहाँ पर लोग बैठे हैं जो इस बात को जानते हैं और इसे देखा है। और यह जब उसने मुझे इस विवाह और तलाक के प्रश्नों की सच्चाई को बताया, यदि कोई एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है, तो वहाँ कहीं तो एक सच्चाई को होना ही है। उन 7 मोहरों के बाद उसने दिखाया कि इसकी सच्चाई क्या है। अब ध्यान दें, उसके पास एक के अलावा दूसरा पति नहीं हो सकता है, क्योंकि स्त्री पुरुष के लिए बनी है और पुरुष स्त्री के लिए नहीं। वो सारी 500 स्त्रियां केवल दाऊद की पत्नी थी, और यह उसका एक नमूना है। जब मसीह सहशताब्दी में सिंहासन पर बैठता है, उसकी दुल्हन एक व्यक्ति नहीं होगी, लेकिन वह लाखों की संख्या में होगी। दुल्हन सब मिलाकर एक, और दाऊद की व्यक्तिगत रूप में बहुत सी पत्नियां थी, लेकिन केवल वे सब मिलकर उसकी एक पत्नी थी। जिस तरह से विश्वासियों की पूरी देह मसीह की दुल्हन है, क्योंकि ये वही है, वो स्त्री, वो पुरुष था। अब हम मसीह के लिए बने थे, मसीह हमारे लिए नहीं बना। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में यही करने का प्रयास करते हैं, वचन को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि मसीह है, जो हमें उपयुक्त लगता है, बजाय इसके कि हम अपने आप को वचन के उपयुक्त बनाने का प्रयास करें। यही भिन्नता है। जब एक पुरुष किसी लड़की को एक परिवार में से चुनता है, तो उसे सुंदरता पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता धोखा है, और सुंदरता, आधुनिक संसारिक सुंदरता, शैतान की ओर से है। ओह, मैं किसी को वहाँ कहते हुए सुनता हूँ, यहाँ सावधान रहना प्रचारक। मैं यह इस धरती पर इन बातों को कहता हूँ जो कि सुंदर कहलाती है, यह बिल्कुल शैतान की ओर से है। मैं आपके लिए इसे साबित करूंगा। तब इस टिप्पणी के उजाले में आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में खोजें, यह देखने के लिए कि यह सही है या नहीं। और यदि आप में से कुछ बहुत सी स्त्रियां सुंदर होना चाहती हैं, तो देखें यह सुंदरता कहां से आती है। आरंभ में हम पाते हैं कि शैतान बहुत ही सुंदर था, यहां तक उसने दूतों को भरमा दिया, और वह उन सभी दूतों में सबसे अधिक सुंदर था। यह दिखाता है कि यह शैतान में है। नीति वचन में कहा, सुलेमान ने कहा, सुंदरता व्यर्थ है। ये सही है, पाप सुंदर है, निश्चय ही है, यह आकर्षक होता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मिनटों के लिए इस पर ध्यान दें। सारे संसार की सभी जातियाँ, पक्षी, जानवर, मनुष्य को छोड़ हम जानवर जीवन में यह पाते हैं कि यह नर ही होता है जो सुंदर होता है और मादा नहीं होती है। ऐसा क्यों? देखो हिरण की ओर देखो, वह सुंदर बड़ा नर हिरण जिस पर सींग होते हैं और यह छोटी हिरणी बिना सींग की होती है। उस मुर्गी की ओर देखो, वह छोटी धब्बेदार मुर्गी और वह बड़ा सा सुंदर पंखों वाला मुर्गा। नर पक्षी और मादा पक्षी की ओर देखें, नीलसर बदक और मादा बदक को देखो। समझे? और संसार में एक भी जाति ऐसी नहीं है जो बनी हो जो कि भरमा सकती है और इतनी नीचे तक गिर सके जितनी एक स्त्री गिर सकती है। अब बहन, उठकर और बाहर मत जाना, बस प्रतीक्षा करें जब तक हम इस बात का अंत नहीं सुन लेते हैं। देखा देखा, कहीं भी कोई भी मादा नहीं है जो अनैतिक हो सकती हो सिवाय एक स्त्री के। आप एक कुत्ते को एक कुतिया कहकर बुलाते हैं, आप सुअर को एक सुअरी कहकर बुलाते हैं, लेकिन नैतिक रूप में उनके पास वहाँ उन आधे दर्जन फिल्मी सितारों से अधिक नैतिकता है। वे नैतिकता को छोड़ कुछ भी और नहीं हो सकते। और स्त्री ही ऐसी एक थी जो दूषित होने के लिए बदली हुई थी। यह सही बात है। देखा, सुंदरता उसे कहाँ पर लेकर जाती है? अब आज यही वो कारण है हम ये पाते हैं कि स्त्रियां सुंदरता में बढ़ रही हैं। आप पर ब्रायन को लीजिए, कभी आपने उसका चित्र देखा है? वह अमेरिका की बहुत बड़ी सुंदरी समझी जाती थी, हर स्कूल की लड़की अब पर्ल ब्रायन से और भी सुंदर है, जो कि कक्षा की एक पिछली पंक्ति हर स्थान पर मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि इसे इसी तरह से होना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है ये इसी तरह से होने जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि आरंभ में पतन या गिरावट स्त्री के द्वारा आई और पतन अंत भी इसी प्रकार से होने जा रहा है? स्त्रियां अधिकार प्राप्त कर रही हैं और पुरुष और इत्यादि पर आज्ञा चला रही हैं। क्या आपको पता है कि वचन ऐसा कहता है? आप जानते हैं जिस दिन वह पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और छोटे छोटे बाल कटवाती हैं, यह सारी बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। और क्या आप जानते हैं कि वो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती हैं? जब आप देखते हैं कि स्त्रियां क्या कर रही हैं, तो आप देखेंगे कि कलीसिया क्या कर रही हैं। यह बिल्कुल सही बात है। अब यह उतना ही सत्य है जितना कि परमेश्वर का वचन सत्य है। कोई भी अन्य मादा ऐसी नहीं बनी जो कि स्त्री की तरह नीचे गिर सकती है और फिर भी उसके द्वारा उसको उसमें से निकाल कर बना। वो मूल सृष्टि में नहीं थी, बाकी की सारी मादा मूल सृष्टि में है। पक्षी नर और मादा, जानवर नर और मादा, लेकिन मनुष्य जीवन में परमेश्वर ने केवल एक पुरुष बनाया और परमेश्वर ने उसे उसमें से निकाला। और स्त्री एक पुरुष का उप उत्पादन है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी चीज को संस्थापित नहीं किया है। वचनों में खोजें, बिल्कुल सही। परमेश्वर नहीं श्रीमान, उसकी मूल सृष्टि में उसे वहाँ पर रखा गया था। लेकिन यदि वह अपने आप को सही ढंग से संभाल सकती है, तो उसके पास पुरुष से भी बड़ा प्रतिफल है। उसे एक परीक्षा के स्थान में रखा गया, उसके द्वारा मृत्यु आई, वह सारी मृत्यु के लिए दोषी है। लेकिन परमेश्वर ने वापस मुड़कर और एक का उपयोग किया, ताकि फिर से जीवन को वापस लाए। अपने पुत्र को स्त्री के जरिए से लाया, एक आज्ञाकारी। लेकिन यदि वह एक बुरी है, तो वह सबसे बदतर होती है, उससे गिरा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता। केन शैतान का पुत्र, उसने सोचा परमेश्वर ने सुंदरता को स्वीकार किया है। वो आज यही करता है। केन शैतान का पुत्र था। ओह, अब आप कहते हैं हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बस इस बात को आपके लिए साफ करूंगा। बाइबल ने कहा कि वो उस दुष्ट से था, इसलिए इससे बात साफ हो जाती है। तो ठीक है, अब वो शैतान का पुत्र था और उसने सोचा कि एक वेदी को लाकर और आराधना के लिए इसे बहुत ही सुंदर बनाऊंगा। यही वो चीज है जिसका परमेश्वर सम्मान करेगा। वे सोचते हैं, आज भी वही चीज सोचते हैं। निश्चय ही यह, हम बड़ी इमारत बनाते हैं, हमारे पास बड़े बड़े संप्रदाय होंगे, हम सबसे बड़े भवन को बनाएंगे और सबसे बढ़िया कपड़े पहने हुए लोग होंगे, बहुत ही सभ्य पादरी लोग होंगे। तभी भी परमेश्वर इससे लाखों मील दूर होता है, यह सही बात है, फिर भी ये एक कलीसिया है। इसलिए यदि परमेश्वर आराधना, सच्चाई, बलिदान का सम्मान करता है, तो केन भी उतना ही धार्मिक था जितना हाबिल था। लेकिन यह तो प्रकाशन के द्वारा था कि वह समझ गया कि ये सेब नहीं था जो उसके माता पिता ने खाया। मैं यहाँ कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो कि एक सेवक के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इसे कहने जा रहा हूँ। मैं सुनता हूँ कि लोग ऐसी बातों को कहते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे चुटकुले सुनाते हैं, और मेरा कहने का अर्थ ऐसा नहीं है। मैं इसे कहता हूँ, हालांकि यदि सेब के खाने से स्त्रियों को यह एहसास हो जाए कि वे नंगी हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उन्हें सेब को फिर से बांट दें। देखा मुझे इसके लिए क्षमा करें, लेकिन बस ऐसे ही कि इससे बदलाव आ जाए। मैंने आप लोगों को यहाँ बांध कर रखा है और स्त्रियों के विषय में बात कर रहा हूँ और इत्यादि। मैं आपको एक मिनट का आराम देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे कुछ बात आने वाली है। अब ध्यान देना, आप ये सेब नहीं था, हम ये जानते हैं। इन दिनों कलीसिया अपनी उपलब्धियों के साथ ऐसी बन गई है जैसे कि और भी सारी मनुष्य की बनाई उपलब्धियां हैं। यह वैज्ञानिक बनती जा रही है, वे वैज्ञानिक कलीसियाएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं चित्रों और ऊंची मीनारों के आकर्षण के द्वारा। और यह बहुत ही बुरी बात है कि पेंटिकॉस्टल इसी रास्ते की लीक के अंदर चला गया है। आपके लिए अच्छा होगा कि एक डफ को लेकर अलग कोने में चले जाएं और परमेश्वर का आत्मा आपके चारों ओर हो। लेकिन आप उन बाकी सभी के साथ तुलना करने के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि आप संप्रदाय हो गए हैं। यही है जिसने इसे किया है। देखा, कलीसियाएं वैज्ञानिक होने का प्रयास कर रही हैं। और ध्यान देना, जैसे जैसे मनुष्य विज्ञान के द्वारा उन्नति को प्राप्त कर रहा है, वह अपने आप को प्रतिदिन मार रहा है। जब उसने बारूद का आविष्कार किया, तो देखो इससे क्या हुआ। जब उसने मोटर गाड़ियों का आविष्कार किया, तो ये बारूद से भी अधिक लोगों को मार रहा है। अब उसने अपने लिए हाइड्रोजन बम बना लिया है। सोचता हूँ कि वह इससे क्या करने जा रहा है। सही है, और ऐसे ही कलीसिया है। जैसे जैसे ये विज्ञान के द्वारा, मनुष्य की बनाई हुई योजना के द्वारा हासिल करने का प्रयास कर रही है, ये आपको परमेश्वर से बहुत दूर लेकर जा रहा है और मृत्यु के अंदर लेकर जा रहा है, पहले की तुलना में कहीं अधिक। यह सही बात है। कलीसिया को उसी तरह से ना चुने जैसे आपने अपनी पत्नी को चुना। देखा, विज्ञान ने जो उसके लिए किया वह एक अद्भुत बात थी, लेकिन अच्छा होगा कि आप ऐसी कलीसिया से दूर रहें जो इस पर है। उसने चेहरे पर लगाने के लिए रंग बनाए, पाउडर और दूसरी चीजें बनाई। उसे उसके वचन के चरित्र के द्वारा चुने। अब आइए हम आज की स्वाभाविक दुल्हन से, नाम की कहलाने वाली आज की कलीसिया दुल्हन से तुलना करें, एक स्त्री से तुलना करें जो आज विवाह करने जा रही है। अब जरा देखें कि विज्ञान ने उस स्त्री के लिए क्या किया है। पहले वह अपने बालों को काट कर आती है, इनमें से एक उस जैकलिन कैनेडी की तरह बाल काटती है। देखा, या कुछ तो इसी तरह से। और आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है। असल में बाइबल पुरुष को अधिकार देती है, यदि वह चाहे तो उसे तलाक देकर छोड़ सकता है। यदि वह ऐसा करती है, वह जो बाल काटती है वो एक अपमानजनक स्त्री है, बाइबल ऐसा कहती है। यह सही बात है, क्या आप यह नहीं जानते? जी हाँ, मैं कैलिफोर्निया में उनके लिए जो नहीं जानते बहुत ज्यादा प्रचार करता हूँ कि वे इसे जान सकें। यह सही है। इससे मुझे क्या लाभ मिलता है? जो भी हो, वे इसे करते हैं। आप सुअर को लेकर और उसका नाम बदलकर उसे मेमना नहीं बना सकते। ध्यान दें, इसके बाद आप मुझसे घृणा करेंगे, लेकिन आप सत्य को जान जाएंगे। देखा, देखो, आइए हम इसकी तुलना करें। यहाँ वह सब तरह के चेहरे पर रंग पोत कर आती है, कुछ तो ऐसा जो वो है ही नहीं। एक आधुनिक दुल्हन, उसके चेहरे को धो दें, वह शायद उससे दूर भाग जाएगा। उसके चेहरे पर से सारी चीजों को साफ कर दें, आप बहुत ही डर जाएंगे। और इसी प्रकार कलीसिया भी बाहर से पूरी तरह रंगी हुई है, धर्म ज्ञान के मैक्स फैक्टर से। दोनों के पास एक सुंदर नकली चेहरे हैं, मनुष्य द्वारा बनाई सुंदरता और ना ही परमेश्वर द्वारा बनाई गई सुंदरता, किसी एक में भी कोई चरित्र नहीं है। ध्यान दें, ठीक जिस तरह से शैतान भरमाने के लिए काफी है। अब आज की आधुनिक दुल्हन की उससे तुलना करें, छोटे कपड़े पहनती हैं, चेहरे पर रंग लगाती हैं, अपने बाल कटवाती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं जो पुरुषों की तरह दिखते हैं, और ऐसे पास्टर की बात सुनती हैं जो उससे कहता है यह सब करने में कोई बात नहीं, वह एक भरमाने वाला है, वह इस बात के लिए उस पार के क्षेत्रों में दुख उठाएगा। यह सही है, भरमाने के लिए ऐसा कर रहा है, कुछ तो ऐसा बनना जो वो स्त्री है ही नहीं। इसी प्रकार से कलीसिया करती है, बड़ी डीडी, पीएचडी, एलएलडी डिग्रियां लेते हैं, जिससे कि आप कह सकें हमारा पास्टर ये वो और इत्यादि है, जो हो सकता है परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं जानता, जैसे अफ्रीका की जंगली जाति मिस्र के रात के विषय में नहीं जानती। यह सही बात है, सही है, वहाँ किसी धर्म ज्ञान के विद्यालयों का अनुभव तो है और परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानते। आधुनिक कलीसिया और उनके धर्म ज्ञान के रंग, उन्होंने अपनी स्त्रियों की सारी महिमा को मिटा दिया है, उनके कुछ मदमस्त लोगों और पास्टर के द्वारा जिसे उन्होंने रखा है, जैसे मानो यह वास्तव में कोई इजाबेल हो। कटे हुए बाल, छोटे कपड़े, श्रृंगार, ये सभी धर्म ज्ञान के स्वाद में तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार से आज कलीसिया खड़ी है, सही है, लेकिन उसका आत्मिक चरित्र उस गृहिणी होने से बहुत दूर है जिसे यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। यदि कोई मसीही इस तरह की स्त्री से विवाह करता है तो यह दिखाता है कि वह अनुग्रह से गिर गया है। उसके परमेश्वर की पसंद के अनुकूल और उसके एक घर की पसंद के अनुकूल घर कैसा होना चाहिए, यह उससे दूर है जब वो इस प्रकार की स्त्री को चुनता है। नहीं श्रीमान, निश्चय ही वो एक मसीही के पसंद के अनुकूल नहीं होगी। उसका आत्मिक चरित्र संसार का सबसे निचला स्तर है, मरा हुआ सांप्रदायिक सुंदरता और संसार की अभिलाषा है। बिल्कुल यही है जहां आज कलीसिया खड़ी हुई है। उसने अपने वचन के द्वारा दिए गए चरित्र को शैतान को बेच दिया, एक वैज्ञानिक मनुष्य के बनाए हुए धर्म के लिए, जब उसके पास अधिकार था परमेश्वर की कलीसिया के रूप में, ताकि परमेश्वर के वचन के साथ बनी रहे और पवित्र आत्मा उसके बीच कार्य कर रहा था, वचन और परमेश्वर के प्रेम के साथ देह को एक साथ जोड़कर रखा था, बजाय इसके उसने अपना जन्म अधिकार ऐसाओं के समान बेच डाला और एक संप्रदाय को ले लिया जो उसे कुछ भी करने देता है, जो भी वो चाहती है, ठीक केवल लोकप्रिय होने के लिए, जैसे उसकी माँ ने निसिया रोम में किया था। परमेश्वर का वचन, ओह यह किस तरह से हमारे पेंटिकॉस्टल क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, यह बहुत ही बुरी बात है, लेकिन इसने यही किया है। जरा एक मिनट के लिए ध्यान दें, एक नन जो कैथोलिक कलीसिया में होती है, वो स्त्री नन बनने के लिए और उस अंतिम पर्दे को लेती है, वह उस कलीसिया के लिए पूरी तरह से बिक जाती है। वह जो प्राण, शरीर और आत्मा है, ये उस कलीसिया की संपत्ति है, उसका अपना खुद का कोई विचार नहीं होता है। जब वो उस अंतिम पर्दे को धारण करती है तो उसका अपना खुद का कोई विचार नहीं होता, उसकी अपनी खुद की कोई इच्छा नहीं होती है। यहाँ पर देखिए कि शैतान उन्हें उसका नकली बनाता है, जैसे कि वो असली हो। सच्ची मसीह की कलीसिया दुल्हन ये भी इसी प्रकार से खुद को उसके लिए और उसकी प्रतिज्ञा किए हुए वचन के लिए बेच देती है, इतना तक कि वही मन जो मसीह में है आप में होता है। क्या ही भिन्नता है। और हम आज पाते हैं कि आधुनिक कलीसिया, एक आधुनिक संसारिक कलीसिया, वो आधुनिक संसारिक कलीसिया और वो आत्मिक कलीसिया दोनों ही गर्भवती हैं, ताकि पुत्रों को जन्म दें। उनमें से एक सांप्रदायिक जन्म है जो वो देने जा रही है। एक दिन इन दिनों में विश्व कलीसियाओं के संघ में, जो कि संसार के लिए मसीह विरोधी को उत्पन्न करेगा एक संप्रदाय के जरिए से, यह बिल्कुल सत्य है। हो सकता है इसे देखने के लिए मैं जीवित न रहूं, मैं विश्वास करता हूं मैं रहूंगा, लेकिन आप युवा लोग याद रखना कि आपने किसी सेवक को ऐसा कहते हुए सुना था, अंत में सब समाप्त हो जाएगा। और यही पशु की छाप है जब वो विश्व कलीसियाओं के परिषद को बनाती है और वह अपने पुत्र को जन्म देगी, मसीह विरोधी। दूसरी परमेश्वर के वचन के द्वारा गर्भवती है और एक देह को जन्म देगी जो यीशु मसीह की पूर्ण देह है, जो कि दुल्हन है। मसीह की देह अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। कितने लोग ये जानते हैं, एक पुरुष और स्त्री एक हैं और मसीह एक देह है। वो वचन दुल्हन को उस देह के बाकी का भाग बनना होगा और दोनों मिलकर फिर से एक देह को बनाएंगे, जैसा कि आदम आरंभ में था, पुरुष उसकी पत्नी एक हैं। अब वो सच्ची दुल्हन, उसने खुद को उसे बेच दिया है, इतना तक कि वह अपने विचारों का उपयोग नहीं करती है, उसके विचार निश्चय ही यही उसकी इच्छा है और उसकी इच्छा उसका वचन है। अब नाम की कहलाने वाली दुल्हन की ओर देखें, जो पुरुष द्वारा चुनी गई है, और इस आत्मिक के लिए आज की स्वाभाविक से तुलना करें। एक आधुनिक इजाबेल ने अहाब को मोहित कर दिया, मैक्स फैक्टर की सुंदरियां, हर एक चीज। इसी प्रकार से कलीसिया की ओर देखें, लेकिन जीवित परमेश्वर के वचन के लिए एक वेश्या है। बड़े बड़े संप्रदाय, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा धन, बड़े वेतन, सब बिक गए हैं। पुलपिट पर खड़े होकर पुरुष इस बात का समर्थन करते हैं कि यह सब सही है और लोगों को बिना रोक टोक ऐसा करने देते हैं। केवल धोखा है, बस ऐसा ही है। सच में यह लौतकियन कलीसियाई युग अंधा है, बिल्कुल ठीक जैसा कि बाइबल ने कहा है कि ये होगा। कहती है, मैं धनी हूँ, मैं एक रानी के समान बैठी हूँ, मुझे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, और तू नहीं जानती कि तू निर्धन, तुच्छ, अंधी, अभागी और नंगी है और इसे नहीं जानती। यदि वह प्रकाशित वाक्य 3 यहोवा यो कहता है वाला वचन नहीं होता तो मैं इसे कभी नहीं समझ पाता। वो यही है और वो इसे नहीं जानती। इस पर सोचें, यदि आप एक पुरुष या स्त्री को जो कि सड़क पर है बिल्कुल नंगे और उन्हें ये बताते हैं कि वे नंगे हैं और वे कहते हैं तुम अपना काम करो, क्यों? कहीं न कहीं उनकी मानसिक दशा में कमी है, उनके दिमाग में कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं कि उन लोगों को किस तरह करना चाहिए, और यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो हमारे पास आज है, और लोग क्यों आपकी ओर इस तरह देखते हैं जैसे कि आप पागल हो, आप उन्हें बताते हैं आपको उन्हें फिर से जन्म लेना होगा, उन्हें बाइबल पर विश्वास करना होगा। वे कहते हैं यह तो बहुत वर्षों पहले की यहूदियों की कथा है, हमारी कलीसिया के पास सही मार्ग है। अभागी, तुच्छ, अंधी, नंगी और इसे जानती तक नहीं, कित्ता, और बाइबल ने कहा कि यही वो स्थिति है जिसमें कि वे चले जाएंगे। एक सच्चा भविष्यवक्ता कैसे इसे देखने में चूक सकता है, मैं नहीं जानता। हर जगह हमारी सारी कलीसियाएं ठीक इसी ओर बहती जा रही हैं। जरा इसे देखें, ठीक आधुनिक चलन में वह पुरानी वेश्या और उसकी पुत्रियां, प्रकाशित वाक्य 17 की, कंगाल, अंधे, तुच्छ लोगों को अपने धार्मिक विद्यालयों के मत सिद्धांत दे रहे हैं जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और उन्होंने उसमें प्राणों के गुलामों को पाया, और हर कहीं के पुरुष और महिलाओं को, बजाय इसके कि लोगों को आकर्षित करें। मसीह अपने वचन को प्रमाणित करता है जो लोगों को आकर्षित करता है, वो कलीसियाओं के लोगों को आकर्षित नहीं करता जो बड़े बड़े संप्रदायों और बड़े बड़े कामों के द्वारा आकर्षित हुए हैं और बड़ी बड़ी बेकार की चीजों और चमकदार चीजों से आकर्षित हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मसीह की दुल्हन को आकर्षित करता है। अब ध्यान दें, ध्यान देने के लिए यह बड़ी रोचक बात है कि किस प्रकार से कलीसिया लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, अच्छे कपड़ों और सुसज्जित गायन समूह के द्वारा, और बाल कटी हुई स्त्रियां और रंगे हुए चेहरे, और वे सोचते हैं कि, और वे दूतों की तरह गाते हैं, एक शैतान की तरह जुटे हैं, सारी रात इस तरह से नाचने के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं, इस विषय में कुछ भी नहीं सोचते, और यही है वह जो सोचते हैं कि ये सब ठीक है, यही सुंदर है। लेकिन आप देखिए, यह झूठी बनावट है, यह परमेश्वर का वचन नहीं है। जबकि सच्ची दुल्हन परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करती है उसके वचन को मानने के द्वारा। अब ध्यान दें, अब आइए हम मसीह की ओर देखें। आप कहते हैं भाई, अब एक मिनट रुकिए, इस सुंदरता के विषय में क्या है जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं? यशाया 53:2 में बाइबल ने कहा कि जब यीशु आया उसकी कोई सुंदरता ना थी कि हम उसकी इच्छा रखते। क्या यह सही है? कोई सुंदरता नहीं थी। यदि वो सांसारिक सुंदरता में आता जैसे कि आज शैतान है, लोग भागकर उसको चारों ओर से घेर लेते और उसे स्वीकार कर लेते, जिस तरह से वे आज कलीसिया के लिए करते हैं, वे उसका विश्वास कर लेते और उसे ग्रहण कर लेते जैसे वो आज शैतान को करते हैं, निश्चय ही वे करते। लेकिन वह उस तरह की सुंदरता में नहीं आया, लेकिन वह हमेशा ही चरित्र की सुंदरता में आता है। वहाँ मसीह कभी भी सुंदर, बड़ा, मजबूत, लंबा चौड़ा मनुष्य नहीं था। परमेश्वर इस प्रकार का चुनाव नहीं करता है। मुझे याद है एक बार भविष्यवक्ता राजा को नियुक्त करने के लिए वहाँ गया कि ईशे के पुत्रों में से एक को राजा बनाए ताकि वह दूसरे राजा का स्थान ले सके, शाउल। और इसलिए यीशे उसे बाहर लेकर आया और उसका लंबा, तगड़ा, ऊंचा, अच्छा लड़का था। उसने कहा कि मुकुट इसके सिर पर, सही दिखाई देगा। भविष्यवक्ता उस पर तेल उंडेलने को गया। उसने कहा परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया है और उसने उनमें से हर एक के लिए मना कर दिया, जब तक कि वो उस छोटे से नीचे झुके हुए कंधे गुलाबी से दिखने वाले लड़के के पास नहीं आ गया और उसने उस पर तेल उंडेल दिया और उसने कहा परमेश्वर ने इसे चुना है। देखा, हम दृष्टि के द्वारा चुनते हैं, परमेश्वर चरित्र के द्वारा चुनता है। चरित्र यीशु मसीह जैसा चरित्र कभी भी नहीं हुआ था। ये आप में रहता है और उसे प्रकट करता है। हम देखते हैं ये सत्य है, यह उसकी कोई सांसारिक सुंदरता नहीं है जो कि उसकी दुल्हन को आकर्षित करे। ये तो उसका चरित्र है, उस कलीसिया का चरित्र जिसके लिए यीशु देख रहा है, ना कि वह बड़े बड़े भवन जहां पर वे बड़े संप्रदाय हैं, जहां बड़ी सदस्यता है। वह इस प्रतिज्ञा के साथ मिलता है कि जहां कहीं पर दो या तीन एक साथ जमा होते हैं, सच में यही है जहां पर सच्चे विश्वासी अपनी आशाओं को परमेश्वर के वचन पर टिकाते हैं, जो सत्य के रूप में प्रमाणित हो, जो ये वास्तव में है, उसके वचन के द्वारा चुनता है, न ही संसार से प्रेम करने वाले झुंड को। वे इससे घृणा करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उससे तलाक ले लिया है, क्योंकि वो उसके प्रकाशन से चूक गई और उसके पास ये नहीं है। वह उसकी चिंता नहीं करता जिस प्रकार से वो व्यवहार करती है और कार्य करती है और उसके पास कितनी सांसारिक चीजें हैं। वह उसके चरित्र के लिए देख रहा है, मसीह का चरित्र। अब बस कुछ देर के लिए यही है, वो अपनी दुल्हन को चुनता है ताकि उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करे, जिस पर आज की आधुनिक कलीसिया निश्चित रूप से यहाँ उसकी योजना से लाखों मील चूक जाती है, क्योंकि वे इसका सत्य होने का इनकार करती है। तो भला ये कैसे हो सकता है? अब वो उस दिन के लिए देख रहा है जब वो दुल्हन तैयार हो जाएगी। इब्रानियों 13:8 बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे ये था, जैसे वो था। दुल्हन को उसका वही मांस होना है, वही हड्डी होना है, वही आत्मा, हर एक चीज में वही, बिल्कुल ठीक वैसा ही बनना है। और तब फिर वे दो एक बन जाते हैं। जब तक कलीसिया वही नहीं बन जाती है, वे एक नहीं है। उसका चरित्र वचन इस युग के लिए अवश्य ही ढाला जाना है, उसे उसी तरह ढाला जाना चाहिए जैसे वो है। अब बंद करते हुए मैं कारण बताना चाहता हूँ कि मैंने इन बातों को कहा है और मैं बंद करूँगा। उस रात सुबह के लगभग 3 बजे मैं जाग गया था। अब आप में से कोई भी इस बात का उत्तर दे, क्या मैंने कभी प्रभु के नाम में आपसे कुछ भी बताया है जो सही नहीं निकला है? यह हमेशा ही सही रहा है, इसलिए मेरी सहायता करें। परमेश्वर जानता है कि यह सत्य है। दुनिया में कहीं भी एक भी हजारों बातों में से जो कही गई है जिसमें वो कभी इसके एक शब्द को भी चूक गया हो, हमेशा ही सिद्ध रूप से पूरा हुआ है। यहाँ तक कि उस दिन जब मैं फिनिक्स में था, या एक वर्ष पहले यह बात थी और मैंने आपको उस विषय में बताया है, इस संदेश पर, श्रीमानों यह कौन सा समय है, और आपको बताया था कि 7 दूत वहाँ पर मिलेंगे और 7 मोहरों का खुलना होगा और जो भी है, और वहाँ उस लाइव पत्रिका ने इसके लेख को छापा था। यह बड़ी ज्वाला ऊपर हवा में उठी, 30 मील ऊंची, यहाँ से वहाँ 27 मील चौड़ी, और उन्होंने कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, अभी भी नहीं जानते। और वे लोग ठीक अभी यहाँ इस भवन में आज रात बैठे हैं, ठीक वहाँ मेरे साथ खड़े हुए थे जब यह घटित हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसे कहा गया। उसने मुझे वे बातें बताई जो कि होने वाली है, और वे बिल्कुल वैसे ही घटित हुई। किस तरह से उनमें से प्रत्येक मोहर खुली और उन भेदों को बताया जो कि सुधारकों और इत्यादि के युगों में से होते हुए गुप्त रहे, बिल्कुल सिद्ध रूप से बताया। कैसे मैं वहाँ पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, उनमें से 3 या 4 लोग ठीक यहाँ पर अभी उपस्थित खड़े हुए हैं। जी हाँ, उससे भी ज्यादा लोग ऊपर पहाड़ी पर जाते हुए पवित्र आत्मा ने कहा, उस पत्थर को उठाओ, हम शिकार खेल रहे थे। उसने कहा, इसे ऊपर हवा में फेंको और कहो, यहोवा यो कहता है। मैंने ऐसा किया, वहाँ से तेज हवा का छोटा सा चक्रवात नीचे आया और मैंने कहा, 24 घंटों के भीतर तुम परमेश्वर के हाथ को देखोगे। वे लोग ठीक यहाँ अभी उपस्थित बैठे हुए हैं। अगले दिन लगभग 10 बजे वहाँ खड़े हुए थे। मैंने कहा, तैयार हो जाओ, वहाँ उस कार के नीचे चले जाओ, एक अनुभवी व्यक्ति। मैंने कहा, कुछ तो होने जा रहा है। आकाश ये पूरा साफ था, ठीक ऊपर एक बड़ी घाटी में आकाश से आग का चक्रवात नीचे उतर आया, जितनी तेज आवाज हो सकती थी उतनी तेज आवाज करते हुए दीवारों से इस प्रकार टकराया। मैं ठीक उसके नीचे खड़ा था, मैंने अपनी टोपी उतारी और अपने सिर को पकड़ लिया और वह मुझसे लगभग 3 या 4 फुट ऊपर था और उस सारी दीवार में चारों ओर इस तरह गड्ढा कर दिया और धमाका हुआ और वापस ऊपर हवा में चला गया और फिर से चक्रवात में घूमने लगा और 3 बार नीचे आया। यहाँ तक कि इसने कांटेदार झाड़ियों के ऊपरी भाग को 200 गज तक काट दिया था। क्या उन लोगों को आमीन कहते हुए सुन रहे हैं? ये लोग वहाँ पर थे जब ये घटित हुआ, देखो, और 3 धमाकों को किया। तब वे उन कार और इत्यादि के नीचे से बाहर निकले और वहाँ पर वापस आकर कहा, यदि आप इसकी चपेट में होते वहाँ नामो निशान तक नहीं बचता। मैंने कहा, यह वही था, वह मुझसे बातें कर रहा था। परमेश्वर तेज हवा के चक्रवात में से होकर बोलता है, देखा, और वहाँ पर वही आग का खंभा था जिसे आप इस चित्र में वहाँ ठहरा हुआ देख रहे हैं। और जब वो ऊपर चला गया तो उन्होंने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, पश्चिमी तट का न्याय हो रहा है। वहाँ से दूसरे ही दिन अलास्का लगभग डूबने की कगार पर था, समझे? यह एक बार वहाँ टकराया, पहला धमाका, जहाँ आपको इसे प्रतीकात्मक रूप में दर्शाने के लिए कुछ तो करना ही होता है, जैसे कि व्यक्ति ने कटोरे में थोड़ा सा नमक लेकर और पानी में फेंक दिया और कहा, यहोवा यो कहता है कि वहाँ पानी मीठा हो जाए, और दूसरा एक यीशु ने पानी को लिया और इसे एक जग में उंडेल दिया और इसमें से दाखरस बनाया। आपके पास कुछ तो चीज होना ही है कि उसे प्रतीकात्मक रूप में दिखा सके, और यह वो पत्थर था जो हवा में ऊपर गया और वापस नीचे आया, जिसने उस छोटे से चक्रवात को आरंभ किया। 24 घंटों के अंदर उसने पहाड़ को हिला दिया, यहाँ तक कि इसने वहाँ इसके चारों ओर चोटी को काट दिया। आदरणीय श्रीमान ब्लेयर इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ठीक अभी उनकी ओर देख रहा हूँ। वो वहाँ ऊपर थे और वहाँ से इसके कुछ टुकड़े और चीजें उठाई। यहाँ टेरी सॉथमैन और वे लोग हैं और वे यहाँ खड़े हुए हैं, और बिली पॉल और भाइयों, इनमें से बहुत से दूसरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो ठीक वहाँ पर थे इसे घटित होते हुए देखने के लिए जब इसने इसे काट दिया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह सत्य है। यह पहले बाइबल के दिनों में की बात नहीं है, यह अभी की बात है, समझे? वही परमेश्वर जिसने हमेशा ही मुझे इन चीजों को दिखाया है और वे पूरी हुई हैं, बिल्कुल शब्द दर शब्द, वे एक बार भी विफल नहीं हुई है। अब मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ। कुछ सप्ताह पहले मैं एक दर्शन में था और मैं एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हुआ था और मुझे कलीसिया का पूर्व दर्शन को देखना था, और मैंने ध्यान दिया कि मेरे इस ओर से आते हुए, और मैं कुछ ज्यादा ही इस ओर खड़ा हुआ था, पश्चिम की ओर मुंह किए हुए, और इस ओर से महिलाओं का प्यारा सा झुंड आ रहा था, बहुत अच्छी वेशभूषा, पीछे की ओर लंबे बाल अच्छी तरह से बनाए हुए, लंबी आस्तीन और घुटने से नीचे तक साफ सुथरी स्कर्ट, और वे सब एक साथ कदम मिलाती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे कि युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए मसीही सिपाही होते हैं यीशु के क्रूस के साथ जो आगे आगे जा रहे हों। और जब वे वहाँ से होकर गुजरी, मैं खड़ा हुआ था और वहाँ पर कुछ तो था, कोई आत्मा जो परमेश्वर की थी, और उसने कहा, ये वो दुल्हन है। और मैंने देखा और मेरा हृदय प्रसन्न था, और वह इस ओर से घूमकर निकल गई और घूमकर मेरे पीछे की ओर चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो इस तरफ पीछे आ गई, इसने कहा, अब आधुनिक कलीसिया का पूर्व दर्शन आएगा और यहाँ पर एशिया की कलीसिया आती है। मैंने ऐसा गंदा झुंड कभी नहीं देखा था। यहाँ पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों की दूसरी कलीसिया आई, वे दिखने में भयानक थी, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने सत्य को बताने के लिए कर्तव्य से बंधा हूँ। और जब उसने कहा, यहाँ अब यह अमेरिका की कलीसिया पूर्व दर्शन में आती है, यदि मैंने कभी शैतानों का झुंड देखा है तो यह वही था। वे स्त्रियाँ निवस्त्र थी जो एक पुराने से मटमैले रंग सी दिखने वाली चीज के साथ थी, जो हाथी की खाल के रंग जैसा था, और वे इसे अपने सामने की ओर पकड़े हुए थी। इसका कोई भी ऊपरी भाग तक नहीं था, और वे इस तरह की कुछ तो क्रिया को कर रही थी जो कि ये नाच था जिसे ये बच्चे यहाँ बाहर करते हैं। वह मटकना और बेहुदा चीजें और उसी तरह का संगीत बज रहा था। और जब मैंने कुमारी अमेरिका को आते देखा तो मैं लगभग बेहोश सा हो गया। अब यह यहोवा यो कहता है वाला वचन है, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उसका सेवक हूँ, तो आप अब मुझ पर विश्वास करें। मैं इस बात को दुनिया की किसी भी चीज के लिए बिना कारण के नहीं कह सकता। पूरे संसार में इतना पैसा नहीं है जो कि मुझसे यह कहलवा सके कि यह सत्य नहीं है। और जब वो वहाँ पर आई तो वह सबसे घिनौनी सी दिखने वाली चीज थी जो मैंने अब तक देखी है। मैंने सोचा, परमेश्वर, जैसा कि प्रचारकों और हम भाइयों ने आपके लिए दुल्हन लाने के लिए कठिन परिश्रम किया है और यही सबसे अच्छा काम है जो हम कर सकते हैं। वो मटक रही थी और अपने सामने इसे पकड़े हुए थी, जैसे ये पत्तियों से बने स्कर्ट जैसी कोई चीज हो, अपने शरीर के अगले भागों के सामने इसे पकड़े हुए थी, अपने निचले भाग के सामने इस तरह से नाच रही थी और मटक रही थी, जैसे कि ये बच्चे यहाँ बाहर उनके अश्लील कार्यक्रम में करते हैं, मटकते हैं। यह अमेरिका की कुमारी मसीहत थी। मेरी सहायता करें, परमेश्वर की सहायता से यही है जो ये उसके चेहरे पर इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं बेहोश हो सकता था। मैंने सोचा, मेरे सारे प्रयास और प्रचार करना और प्रोत्साहन के विषय में क्या, उनमें से प्रत्येक के बाल छोटे कटे हुए थे और वे मटक रही थी और इसे सामने की ओर पकड़े हुए चल रही थी और वे पास आई जहाँ मैं इस अलौकिक अस्तित्व के साथ खड़ा हुआ था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, मैं उससे मुझसे बात करते हुए सुन रहा था, वह ठीक मेरे पास ही था, लेकिन जब वे इस ओर मुड़े वे इसे पकड़े हुए थी और बस मटकती हुई और हंसती हुई और चली जा रही थी, इस तरह से अपने सामने की ओर इसे पकड़े हुए चली जा रही थी। अब मैं उसकी उपस्थिति में वहाँ खड़ा हूँ और उसका सेवक, और जो कुछ भी मैं अपनी ओर से अच्छा कर सकता हूँ सब करने की कोशिश की है। मैंने सोचा, परमेश्वर, इससे मेरा क्या भला हुआ, ऐसा करने से क्या भला हुआ, ये सारा चिल्लाना और विनती करना और विश्वास दिलाना और महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य जो कि आपने दिखाए, और किस तरह से मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ और घर जाता हूँ और प्रचार करने के बाद उन पर चिल्लाता हूँ और वह सब करता हूँ, और इस सबसे मेरा क्या भला हुआ, और उसके बाद मैं आपके सामने इस तरह की कोई चीज को प्रस्तुत करूं एक दुल्हन के लिए। और जब मैं वहां खड़ा हुआ देख रहा था, वो वहां से होकर गुजरी और आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका पिछला भाग कुछ भी ढका हुआ नहीं था, वह इसे अपने सामने पकड़े हुए थी और झूमते हुए इस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मटक मटक कर चल रही हो और अपने अंगों को इस तरह उछाल रही थी, और वो ओह यह अश्लीलता थी किस तरह से वो किए जा रही थी, अपने शरीर को ऐसे लचका रही थी। अब मैं, आप कहते हैं भाई ब्रैनम, इसका क्या अर्थ है, मैं नहीं जानता, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखा। और जब वो इस तरह से वहाँ से गुजरी, मैंने उसकी ओर देखा, ओह मैं बस बिल्कुल बेसुध सा हो गया, मैं बस पीछे घूम गया। मैंने सोचा, परमेश्वर, मैं दोषी हूँ, वहाँ मुझे कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस बेहतर होगा मुझे यह छोड़ देना चाहिए। श्रीमती कार्ल विलियम्स, यदि आप यहाँ बैठी हुई हैं और वह स्वप्न जो आपने मुझे कुछ समय पहले बताया था, जो आपने उस रात देखा था, आपको परेशान कर रहा था, ये यही है, मेरे हाथ से कार के स्टीयरिंग को ले लिया गया। फिर मैंने बस सोचा, मैं इसे भूल जाना ही बेहतर समझता हूँ, मैं चला गया था। तब अचानक से मैंने इसे फिर से आते हुए सुना, और इस ओर से आती हुई वही दुल्हन आती है जो घूमकर इस ओर चली गई थी। यहाँ वे फिर से छोटी स्त्रियाँ आती हैं, और उनमें से प्रत्येक ने अपनी राष्ट्र की वेशभूषा पहनी हुई थी जहाँ से वे आई थी, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इत्यादि, प्रत्येक ने इसी तरह के वस्त्र पहने हुए थे, सबके लंबे बाल थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन पहले वाले झुंड के थे। और यहाँ पर वे चलती हुई आ रही थी, मसीह के सिपाही जैसे युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब वे उस पूर्व दर्शन के स्थान से होकर आगे निकल गईं जहाँ हम खड़े थे, तब अचानक से हर एक आंख उस ओर चली गई, और तब वे वापस मुड़ी और वे आगे की ओर बढ़ती चली गई। और तब जैसे ही उन्होंने ठीक आकाश की ओर जाना आरंभ किया, यह दूसरा झुंड ऊपर उस पहाड़ के किनारे तक गया और इस तरह से नीचे जाने लगा। इन्होंने सीधे ऊपर आकाश की ओर बढ़ना आरंभ किया, और जब वे चलते हुए आगे बढ़ने लगी, मैंने ध्यान दिया, कुछ छोटी लड़कियां जो पीछे की तरफ थी, ऐसा दिखाई दिया कि वे कोई विदेशी लड़कियां हैं, जैसे कि स्वीडन या स्विट्जरलैंड या किसी और स्थान की थी। उन्होंने इधर उधर देखना आरंभ किया और मैंने कहा, ऐसा मत करो, उस कदम ताल की रेखा से बाहर मत निकलो। और जब मैंने इस प्रकार से चिल्लाया, मैं दर्शन से बाहर आ गया, इस तरह से हाथ को ऊपर किए खड़ा हुआ था। मैंने सोचा, अच्छा, यही कारण है कि मैंने इसे कहा जो आज रात मेरे पास है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या यह आपके सोचने से भी अधिक देर हो गई है? क्या हो सकता है उसे पहले ही बुला लिया गया है और चुना गया है, मोहर किया गया है। आप जानते हैं वहाँ कोई भी अतिरिक्त नहीं होगा। क्या यह संभव हो सकता है? ओ हाँ, याद है उस दिन मैंने नाश्ते पर क्या कहा था? नर और मादा के प्रजनन के शुक्राणु पर वहाँ लाखों जीवाणु आगे जाते हैं, लाखों अंडे आगे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ही होता है जो जीवित रहता है। और जबकि वे सभी एक से होते हैं, पर 10 लाख में एक ही होता है। उनमें से प्रत्येक एक सा अंडा है और एक ही तरह का जीवाणु है। उनमें से एक ही जीवित रहता है और उनमें से शेष मर जाते हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा वो एक होगा जो कि परिपक्व अंडा होगा। और ओह, इसके विषय में क्या है, परमेश्वर को ही यह तय करना है कि क्या ये एक लड़का होगा या लड़की होगी, वह सुनहरे या काले बालों वाली होगी, या ये जो कुछ भी होने जा रहा है, परमेश्वर इसे तय करता है। ऐसा नहीं कि पहला वाला जाकर मिलता है, लेकिन उस पहले एक को परमेश्वर ही तय करता है। हो सकता है एक यहाँ से आए और एक, यदि आपने कभी देखा है परीक्षण की नली में उन शुक्राणु को एक साथ आते देखते हैं, मैंने इसे देखा है। परमेश्वर को ही इसे तय करना है। वे सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन ये चुनाव के द्वारा ही होता है। स्वाभाविक जन्म चुनाव के द्वारा होता है। परमेश्वर एक को 10 लाख में से लेता है। जब इसराइल ने मिस्र को छोड़ा, वे प्रतिज्ञा के देश की ओर उनके मार्ग पर थे, तो वे लगभग 20 लाख लोग थे। उनमें से प्रत्येक उसी एक बलिदान किए मेमने के नीचे था, नहीं तो वे जीवित नहीं रहते। उनमें से हरेक ने मूसा की सुनी, उस भविष्यवक्ता की। उनमें से हरेक ने उसके लिए लाल समुन्दर में बपतिस्मा लिया था। उनमें से हरेक नाचा मरियम के साथ, जो स्त्रियां थी ऊपर और नीचे, जब उस समुद्र के किनारे पर, जब परमेश्वर ने शत्रु को नष्ट कर दिया। उनमें से हरेक मूसा के साथ खड़ा हुआ और उसे आत्मा में गाते हुए सुना। वे उनमें से हरेक ने जंगल में मन्ना खाया जो स्वर्ग से नीचे गिरता था। हर रात को नया मन्ना, जो कि संदेश का एक नमूना है, हर एक ने उसमें से खाया। लेकिन 20 लाख में से कितनों ने इसे कर दिखाया? तो 10 लाख में से एक। आज रात समस्त संसार में 50 करोड़ मसीही लोग हैं, जिनमें कैथोलिक और सारे शामिल हैं। 50 करोड़ नाम के कहलाने वाले विश्वासी संसार में हैं। यदि आज रात रैप्चर होता है, तो इसका अर्थ होगा, यदि 10 लाख में से एक की गिनती थी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन यदि ऐसा है तो अगले 24 घंटों में 500 लोग गायब होंगे। आप इस विषय में कभी सुनेंगे भी नहीं। कैसे भी, यदि इतने लोग लापता भी हो जाएं, जो भी हो, उनके लिए सोचा तक नहीं जाएगा। तो मित्रों, यह हमारे लिए भी हो सकता है, जैसे यह तब हुआ जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। यहाँ तक कि चेलों ने भी कहा, वचन ऐसा क्यों कहता है? वे प्रेरित या भविष्यवक्ता क्यों कहते हैं? ऐसा फिर क्यों कहा जाता है कि एलिया को पहले आकर और सब बातों को वापस लौटाना अवश्य है? उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और तुम इसे नहीं जानते। इन दिनों में से एक दिन हम यहाँ बैठे रह सकते हैं, इससे पहले कि महासंकट आए। रैप्चर के विषय में क्या है? ये तो पहले ही हो चुका और तुम इसे नहीं जान पाए। सारी देह मोहर हो चुकी है, बस वह अपने स्थान पर आ रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह इसी तरह से है, मैं आशा करता हूँ कि ये इस तरह से नहीं है। लेकिन मित्रों, जबकि हम, यदि आज रात हमारे हृदय पर एक अनुभव हुआ है कि हमें अपने जीवन को सही कर लेना चाहिए, और वे चीजें जो हमने की हैं, मैं एक सेवक भाई होने के नाते आपको परामर्श देता हूँ। मैं इसे पहली बार पुलपिट पर से कहने जा रहा हूँ। मैंने आज रात इस बात को बहुत खोल कर कहा है। इतना मैंने पहले किसी बात पर किसी भी समय सभी लोगों के सामने नहीं कहा, क्योंकि मुझे इन सभाओं में बड़ी स्वतंत्रता मिली है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ, तो जो मैंने बताया है उसे आप ध्यान से सुने। यदि आपके हृदय में थोड़ी सी भी शंका की अनुभूति हो रही है, तो अभी आप परमेश्वर के पास जाएं। आप ऐसा करें, जरा एक मिनट रुकना भाई। आप अपने संप्रदायों की ओर देखो, जिनकी आप सेवा करते हैं, अपनी कलीसियाओं की ओर देखो। क्या यह ठीक परमेश्वर के वचन के साथ है? क्या आपने हर योग्यता को पूरा किया है? कहते हैं, मैं एक भला मनुष्य हूँ। ऐसे ही निकुदेमस और बाकी के सारे लोग भी थे, वे अच्छे लोग थे। देखा, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं। और महिलाएं, मैं चाहता हूँ कि आप दर्पण में देखें और देखें परमेश्वर एक महिला से क्या चाहता है कि वो करे, और परमेश्वर के दर्पण में देखें, ना ही अपनी कलीसिया के दर्पण में, परमेश्वर के दर्पण में, और देखें कि क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह की आत्मिक दुल्हन की योग्यता को पूरा कर सकती हैं। सेवकों, आप इसी तरह से सोचें, क्या आप यहाँ सत्य से समझौता करते हैं ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे? यदि ऐसा नहीं था तो क्या आप ऐसा करेंगे यदि वे आपको अपने कलीसिया से बाहर निकाल दें? मेरे प्यारे भाई, यदि आप इस तरह से महसूस करते हैं तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम में चेतावनी देता हूँ, वहाँ से ठीक अभी निकल जाएं। और महिला, यदि आप एक मसीही की योग्यता के लिए खरी नहीं उतर सकती हैं, ना ही नाम मात्र मसीह के रूप में, लेकिन अपने हृदय में और आपका जीवन बिल्कुल ठीक परमेश्वर के विवाह के प्रमाण पत्र का नमूना है, यहाँ कहते हैं कि ये ऐसा होना ही है। और यदि कलीसिया के सदस्य, यदि आपकी कलीसिया इस तरह से नहीं है, उसके वचन की परमेश्वर की योग्यता में खरी नहीं उतर सकती है, तो उसमें से बाहर निकलें और मसीह में आ जाएं। यह गंभीर चेतावनी है। हम नहीं जानते किस समय, और आप नहीं जानते कि किस समय एक दिन यह शहर यहाँ इस समुन्द्र की तलहटी में पड़ा होगा। ओह कफरनहूम, यीशु ने कहा, तू जो स्वर्ग तक उठाया गया अधोलोक तक नीचा किया जाएगा, क्योंकि यदि सामर्थ के काम सदोम और अमोरा में किए गए होते तो यह आज के दिन तक खड़ा होता, और सदोम और अमोरा मृत्यु सागर के तलहटी में पड़ा है, और कफरनहूम समुन्द्र की तलहटी में है। तू जो नगर है जो अपने को दूतों के नगर होने का दावा करता है, जिसने अपने आप को स्वर्ग तक ऊंचा उठाया और सारी गंदी फैशन की अश्लील चीजों और इत्यादि को भेजा, यहाँ तक कि बाहर के देश भी यहाँ आकर हमारी गंदगी को बटोर कर और इसे बाहर भेजते हैं, अपनी अच्छी कलीसियाओं और मीनारों और इत्यादि में, जिस तरह से तुम ऐसा करते हो। याद रखना, एक दिन तू इस समुन्द्र की तलहटी में पड़ा होगा। तेरा बड़ा मधुमक्खी के छत्ते का सा खोखलापन ठीक अभी तेरे नीचे है। परमेश्वर का क्रोध ठीक तुम्हारे नीचे उबल रहा है। कितने समय तक इस रेत की पट्टी को पकड़े रखोगे जो उसके ऊपर लटक रही है, जबकि वहाँ दूर वह समुन्दर जो एक मील गहरा है, वहाँ अंदर आकर पूरी तरह साल्टन के समुन्दर तक भर जाएगा। यह पोम्पई के अंतिम दिन से भी बदतर होगा। पश्चाताप करो लॉस एंजलिस, बाकी के आप लोग भी पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। परमेश्वर के क्रोध की घड़ी धरती के ऊपर है, भागो जब तक भाग निकलने का समय है, और मसीह में आ जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जब मैं अपनी आत्मा में कांप रहा हूँ, मेरे हृदय से चेतावनी के आंसू की बूंदें गिर रही हैं। प्रदान करें हे परमेश्वर, मैंने जो इन पुरुष और महिलाओं से कहा है वे इसे हंसी मजाक न समझें, और कलीसिया के लोग इस विषय में यह न सोचें जैसे कि यह कोई पक्षपात है या उनके विरोध में कुछ है। प्रभु, होने दे कि वे देख सकें कि यह प्रेम में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप मेरे गवाह हैं। इस तट पर मैं वर्षों और वर्षों से आता रहा हूँ, आपके वचन को प्रचार कर रहा हूँ। हे परमेश्वर, मेरी गवाही को रखें। यदि आज रात यह घटित हो जाता है कि मैंने सत्य को बताया है, आप जानते हैं कि दुल्हन का यह दर्शन सत्य है, मैंने इसके द्वारा आपका नाम लिया है प्रभु, और यह कहा था कि यह यहोवा यो कहता है वाला वचन है, और मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं सचेत या जागरूक हूँ प्रभु, कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लोग अपने आप को आज रात हिलाएं और उस आने वाले क्रोध से भागें, क्योंकि इकाबोद का नाम उन द्वार के ऊपर और राष्ट्रों के ऊपर लिखा हुआ है, और एक काला सही होने का चिन्ह इसके ऊपर लग गया है। परमेश्वर का आत्मा इससे बहुत शोकित हुआ है, और वे तराजू में तोले गए और हल्के पाए गए। नबुकदनेस्सर राजा का पर्व फिर से दोहराया गया है। शराब पीने वाली पार्टियों और आधे कपड़े पहने महिलाओं के साथ जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, हे स्वर्ग के परमेश्वर, इस पाप से भरे संसार और पाप से भरे लोगों के ऊपर दया करें प्रभु, जैसे कि हम आज रात हैं। परमेश्वर, मैं इस बिचवाई में खड़े होने का प्रयास कर रहा हूँ, और दिव्य दया के लिए मांगता हूँ कि आप आज रात इस भीड़ से बात करें और अपनी दुल्हन का ध्यान आकर्षित करें प्रभु, कि किसी भी संप्रदाय के चिन्ह के द्वारा आगे न बढ़ें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आवाज के द्वारा हे परमेश्वर इसे प्रदान करें, आज रात उन्हें यह पता चल जाए कि आप ही परमेश्वर हैं और आपका वचन सत्य है। जबकि इन लोगों के सामने गंभीरता से हम इनका ध्यान आपके वचन की ओर खींचते हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। उन्होंने आपको देखा है, किसी भी संदेह की छाया से परे उनकी भीड़ में से होकर निकलते हुए, और उन्हें बताते हैं कि उनके हृदय में क्या है। और आप जानते हैं प्रभु कि ठीक अभी क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि ये सत्य है हे परमेश्वर। और मैं आपसे यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, होने दे कि पवित्र आत्मा फिर से बिचवाई को करे प्रभु, और इस श्रोतागण में से खींच लें प्रभु, जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हे परमेश्वर इसे प्रदान करें, मैं पूरे हृदय से प्रार्थना करता हूँ। स्वाभाविक रूप में ये लोग प्रभु इस संदेश को समर्थन देने में उनका अपना एक एक पैसा भी दे देंगे, वे कुछ भी करेंगे जो वे कर सकते हैं। लेकिन हे परमेश्वर, जब इसके अनुसार चलने की बात आती है और इसमें आने की बात आती है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि यह आज की रात हो कि आप उन्हें इनाम देंगे और इस कन्वेंशन में अपनी पवित्र आत्मा को उढ़ेलेंगे, और होने पाए कि कोई खेल तमाशा या उछलना कूदना वहाँ पर ना हो, लेकिन एक विलाप करना, रोना और एक पश्चाताप करना हो। वेदी के सींगों को पकड़े रहें, जबकि आज रात हम देख रहे हैं कि न्याय हमारे नीचे गरज रहा है। परमेश्वर इसे प्रदान करें, मैं उतनी ही ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ जितना मैं जानता हूँ कि कैसे करना है, यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता कि इससे अधिक और क्या कहा जाए। यदि परमेश्वर की सामर्थ से मैंने आपकी दृष्टि में अनुग्रह को पाया है, यदि आप मुझ पर उसका भविष्यता होने का विश्वास करते हैं, यह सार्वजनिक रूप में पहली बार है कि मैंने इसे कभी कहा है, लेकिन मैं किसी प्रकार की एक अजीब सी चेतावनी को महसूस कर रहा हूँ। मेरा इसकी ओर झुकाव नहीं है, आप जानते हैं कि मेरा नहीं है, मैं इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करता। मैं इस संदेश को बोलने से और उन बातों को बोलने से हिचकिचा रहा था, मैं ऐसा करने से बचने के लिए इधर उधर होता रहा और ऐसा करने से बचता रहा, लेकिन इसे कहा जा चुका है और यह न्याय के दिन पर सामने आएगा एक गवाह के रूप में कि मैंने सत्य बताया है। यह यहोवा यो कहता है वाला वचन है। ओ पेंटिकॉस्ट, अपने जीवन के लिए दौड़ो, वेदी के सींगों की ओर दौड़ो और रो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि वो समय आएगा जब आप रो सकते हैं और इससे कोई लाभ न होगा। क्योंकि ऐसाओं ने अपने जन्म सिद्ध अधिकार के स्थान को पाना चाहा और इसे नहीं पा सका, मैं आपको सौंपता हूँ। ओह कैलिफोर्निया, ओह फुल गॉस्पल बिजनेसमैन का कन्वेंशन, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिसे मैं छोड़ चुका हूँ और जिसे मैंने अपने हृदय से बांध रखा है, मैं आज रात आपको यीशु मसीह को सौंपता हूँ। उसकी ओर दौड़ो, शैतान आपको इसके लिए कभी भी ठंडा न करने पाए। ठीक इसके साथ बने रहें जब तक आप हर एक जन पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, इतना अधिक जो आपको इस वचन की ओर आने को लगाएगा, जो कि आप महिलाओं का सुधार कर देगा, जो आप पुरुषों का सुधार कर देगा। यदि आप कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है और वचन के अनुरूप नहीं होते हैं, तो आप में ये कोई दूसरी आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा उसके वचन पर है, मसीहा अभिषिक्त वचन। दुल्हन को अवश्य ही एक मसीही होना चाहिए, अभिषिक्त वचन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यदि आप मेरी आवाज को फिर न सुने, यदि प्रभु ने चाहा तो मैं कुछ घंटों में अफ्रीका जा रहा हूँ, हो सकता है मैं कभी वापस ना आऊँ, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपको अपने पूरे हृदय से सत्य को बता दिया है। मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छिपाई जो परमेश्वर ने आप लोगों को बताने के लिए मुझसे कहा, और मैंने यह प्रभु के नाम में कहा है। यह पवित्र क्षण है, मैं नहीं जानता कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। मैंने पुलपिट को 3 या 4 बार छोड़ने की कोशिश की है और मैं इसे नहीं कर सका। यह एक पवित्र घड़ी है, आप इसे कभी ना भूलें। हो सकता है यही वो समय हो कि परमेश्वर अपनी अंतिम पुकार को कर रहा हो। मैं नहीं जानता किसी दिन वो अंतिम बार पुकारेगा, कब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको उस दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ। ये ऐसा लगता है कि दुल्हन का काम समाप्त होने पर है। नाम मात्र की कलीसियाओं को देखो जो आ रही हैं। जब सोई हुई कुंवारी तेल लेने के लिए आती है तो वो इसे लेने में असफल रही, दुल्हन अंदर चली गई, रैप्चर हो जाता है। जब वे तेल को खरीदने गई, दूल्हा आ पहुंचा। क्या आप सो रहे हैं? जल्दी से जाग जाओ और अपने आपे में आ जाओ और आइए हम में से प्रत्येक जन इस तरह प्रार्थना करें जैसे कि हम इसी मिनट मर रहे हों। प्रभु के नाम में आइए हम में से प्रत्येक जन अपने अपने तरीके से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर दया करें, प्रभु मुझ पर दया करें, हम सब पर दया करें। इससे क्या लाभ होता है, हम क्या करते हैं कोई मतलब नहीं यदि हम इन चीजों में असफल होते हैं। हे परमेश्वर, मैं खड़े होकर और दया के लिए मांगता हूँ इससे पहले यह बड़ा शहर सागर में डूब जाए और परमेश्वर का न्याय इस तट को साफ कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप अपनी दुल्हन को पुकारें। मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में आपको सौंपता हूँ। आमीन आमीन। मैंने सच्चाई को बताया।